നഹ്മദുഹു വനുസല്ലി അലാ റസൂലഹിൽ കരീം അമ്മ ബാദു ഫൗസു ബില്ലാഹി മിനശ്ശൈത്വാനിർ റജീം റബ്ബിഷ്റഹ്ലി സദ്രി വയസ്സിർലി അംറി വഹ്ലുൽ ഉഖ്ദത മിൻ ലിസാനി യഫ്ഖഹു ഖൗലി റബ്ബി യസ്സിർ വലാ തുയസ്സിർ വതമ്മിം ബിൽ ഖൈർ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി മുഹമ്മദിൻ കമ സല്ലൈത അലാ ഇബ്രാഹീമ വഅലാ ആലി ഇബ്രാഹീമ ഇന്നക ഹമീദു മജീദ് اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تبارك تعالى في القرآن المجيد بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا وإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. آج ہم جس موضوع پہ بات کریں گے وہ کیا ہے گناہوں کے ہماری زندگی پر اثرات. جتنی بھی باتیں آپ ساتھیوں نے کہیں ان میں سے ہر ایک کا تعلق کچھ نہ کچھ اس موضوع سے ہے, تو آج ہم تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل سے دیکھیں گے کہ جو گناہ ہم کرتے ہیں اس کا ہماری زندگی پہ کیا اثر پڑتا ہے, پڑھتا بھی ہے کہ نہیں پڑھتا. اس میں ہمیں اس سوال کا جواب بھی مل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں, یہ بھی جواب مل جائے گا کہ ہمیں اچھے اور برے کا کیوں نہیں پتہ چلتا, ہم کہاں کھڑے ہیں, کس نظر پہ ہیں. تو یہ ساری چیزوں کو انشاءاللہ ہم دیکھیں گے. اگر اس موضوع پہ قرآن پاک کی کچھ آیات کو دیکھ لیا جائے تو یہ موضوع ہمیں قرآن پاک میں بہت ساری آیات میں ملتا ہے. مثلاً سورۃ نساء کی آیت نمبر 123 میں آتا ہے میں یہ عمل سوئیں یجزا بھی, جو بھی برا عمل کرے گا اس کی جزا پائے گا. آپ صرف آیتوں کے نمبر ہی نوٹ کریں گے نا ایک دو, تو بعد میں جا کے آپ پوری آیت پڑھیں گے تو آپ کو, بلکہ اس کی تفسیر سنیں گے تو بہت ہی کچھ مل جائے گا. پھر اسی طرح دوسری آیت ہے سورۃ مومن آیت 40 من عمل سیئتا, جس نے بھی برا عمل کیا فلا یجزا, اس کو نہیں جزا دی جائے گی مگر الا مصلحہ اسی کے برابر. اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جو برا کام بندہ کرتا ہے اس کے برابر کی سزا ملتی ہے, حالانکہ نیکیوں میں اس سے مختلف معاملہ ہے. اس میں 10 گنا کی بات ہے. سورۃ الانعام میں آتی ہے آیت کہ جب کوئی بندہ نیکی کرتا ہے تو اس کو اس کے 10 سے بھی زیادہ ملٹیپل ملتے ہیں. لیسٹ نیکی 10 ہے لیکن گناہ جو ہے وہ برابر ہے. اسی طرح تیسرا ریفرنس نوٹ کیجیے گا سورۃ شورا کی آیت نمبر 40 سورۃ شورا آیت نمبر 30 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما اصابکم من مصیبت, اور جب بھی تم کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے. اب اس مصیبت کو سنتے وقت آپ اپنے ذہن میں کوئی بھی لے آئیے, بیماری, دکھ, پریشانی جو انسانوں کو لگی رہتی ہیں, تو فرمایا کیوں آتی ہیں, فبیما کسبت ایدیکم, یہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا, یعنی اٹ از یور ڈیڈس, تمہارے جو بھی کام ہوتے ہیں اس کو اللہ تمہارے سامنے کسی مصیبت کی صورت میں لے آتا ہے. بلکہ وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ, بہت سارے گناہوں کو تو اللہ تعالیٰ معاف بھی کر دیتے ہیں. یہ سورۃ شورا کی آیت نمبر 30 ہے. کیا پتہ چلا کہ جتنے ہم گناہ کرتے ہیں اتنی سزا نہیں ملتی. اگر اتنی سزا مل جائے تو قرآن پاک میں آیت موجود ہے کہ اگر اللہ لوگوں کو ان کے ہر گناہ پہ پکڑ لے تو تمہیں زمین میں ایک بھی چلتا پھرتا نہ دکھے. ایک روایت میں یہاں تک آتا ہے قریب ہے کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے جانوروں اور چیونٹیوں کو ان کی بلوں میں مار دیا جائے. ایک جگہ یہاں تک آتا ہے کہ اللہ کو یہ بے زبان جانوروں کا اگر خیال نہ ہو تو کبھی بارش ہی نہ ہونے دے. یعنی ہمارے گناہ بارش کو روکتے ہیں. جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے چھو کے رزق دینا ہے تو ان کو اس چیز سے بچانے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ بارش کر دیتے ہیں. پھر اسی طرح آپ دیکھیے سورۃ فاطر کی آیت 43 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں بلا یحیق المکر سیئن الا باہلہ, اور نہیں گھیرتا مکر, مکر سے مراد یہاں برا عمل ہے, مکر سیئ یعنی برا عمل نہیں گھیرتا مگر اس کے کرنے والے کو. اب یہ ساری آیتوں کو پڑھتے کا دل بند نہیں ہو رہا؟ ایسے لگ رہا ہے مجھے تو, یہ صرف آیتوں کا چھوٹا سا ٹکڑا پڑھتے ہوئے ایسے لگ رہا تھا کہ ایک بھنور ہے جس میں میں پھنس جاؤں گی. گناہ ایک بھنور ہے جو اپنے کرنے والے کو اس میں پھنسا لیتا ہے. آپ سوچیں نا کہ کوئی ایک بندہ بیٹھا اور اس کے ارد گرد آپ کوئی ایسا جال بن دے کہ وہ اس میں سے نکل ہی نہ سکے. تو ہر بندہ اپنے گناہوں کے عوض گروی ہے. سورۃ مدثر میں بھی آتا ہے, ایک اور جگہ پہ بھی آتا ہے کل نفس بما کسبت رہینہ. ہر بندہ اپنے اعمال کی بس گروی ہے. گروی سمجھتے ہیں کس کہتے ہیں؟ رہن رکھا ہوا, مورگیج. یعنی آج ہم اس دنیا میں اپنے اس جسم سے جو کام کرا رہے ہیں, اچھا یا برا, اس کا ہمارے جسم پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. آج نیکیاں کریں گے تو ہمارا جسم کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آزاد کریں گے. یعنی ہمارے جسم کو اس گروی سے, اس مورگیج سے بچانے کے لیے ہمیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے. تو آئیے ذرا دیکھتے ہیں کہ جب ہم نیکی کرتے ہیں یا گناہ کرتے ہیں تو ہماری زندگی پر اس کا کیا اثر ہوتا ہے. اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات سمجھ لیجئے کہ انسان کے جسم کے اندر دو قسم کی زندگی ہیں. ایک جسے ہم ظاہری زندگی کہتے ہیں, جو اس وقت ہم سب کی ہے, تو ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو بھی بات سن رہا ہے اس کا تک کہ وہ زندہ ہے, ٹھیک ہے نا, اور جو اس وقت بات بول رہا ہے وہ زندہ ہے. کل ریکارڈنگ سنے اور بات کہنے والا نہ رہے تو اس کو تو زندگی نہیں کہیں گے. تو ایک زندگی وہ ہے جو ہم سب کو دکھتی ہے, اور جب ہم دیکھتے ہیں کوئی مر گیا تو وہ موت ہو جاتی ہے. جیسے آپ اپنے فوت شدہ رشتہ داروں کو سوچئے تو وہ آج نہیں ہے نا, تو وہ مردہ ہے. ان کے مقابلے میں جو موجود ہے وہ زندہ ہے. یہ زندگی بہت ویل نون ہے, اس کو سب جانتے ہیں. لیکن ایک دوسری زندگی ہوتی ہے جس کو باطنی زندگی کہتے ہیں, انر لائف. یہ آؤٹر لائف ہے, یہ ظاہری زندگی ہے, وہ انر لائف ہے. وہ کیسی ہے؟ وہ اندر کی زندگی ہوتی ہے, وہ روح کی زندگی ہے. دوسرے لفظ میں آپ یہ کہہ لیجئے کہ جو چل پھر رہے ہیں نا انسان, ہم سب, یہ دو قسم کے انسان ہیں, ایک باہر کا انسان اور ایک اندر کا انسان. باہر کا انسان جو ہے نا, اپنے کھانے پینے, صحت, علاج, دوائیں اور اسی طرح سے, اس کے ساتھ دنیا میں چلتا ہے. ہم جو کھاتے ہیں پیتے ہیں, ابھی تھوڑی دیر میں بھوک لگ جائے گی, پھر جب بہت وقت کام کرتے رہیں گے تو نیند آئے گی, سارا دن یہ چلتا رہتا ہے نا. تو ہر بندے کے اپنی روٹین کے مطابق اس کی چیزیں فرق ہیں. ہم پاکستانی لوگ پاکستانی کھانا کھاتے ہیں, چائنیز لوگ چائنیز رس کا کھانا کھاتے ہیں, ویسٹرن لوگ عموماً پھیکا کھانا کھاتے ہیں. تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ظاہر کی زندگی آج, یہ ہر بندے کی فرق ہے. جو بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں ان کو زیادہ بھوک لگتی ہے, جو کھا کے بیٹھے رہتے ہیں ان کو بھوک نہیں لگتی, فرق ہے نا. اسی لحاظ سے ہم سب کی, کسی کی صحت بہت اچھی ہے, کسی کی کم ہے, کوئی بہت اسکنی ہے, کوئی بہت فیٹی ہے, ٹھیک ہے. دوائیں سب کچھ الگ ہے. یہ سب چیزیں تو ہو گئیں وہ ظاہری زندگی کی, کہ یہ تو ہم سب کو ہی پتہ ہے. لیکن جو ہماری اندر کی زندگی ہے نا, وہ سب کی ایک جیسی ہے. اس میں آپ ایسٹ میں رہیں, ویسٹ میں رہیں, نارتھ میں رہیں, ساؤتھ میں رہیں, آپ آج کے دور میں یا صحابہ کے دور میں, اندر سے ہر بندہ ایک ہی جیسا ہے. ایک مثال دوں گی آپ کو. گھوڑے پہ سوار کوئی شخص آپ نے کبھی دیکھا ہو یا سوچا ہو, بس اس کو سمجھیے کہ اندر کے انسان کی مثال شخص سوار کی ہے. ایک ایسا شخص ہے جو گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اور باہر کے انسان کی مثال سواری کی سی ہے. دونوں اپوزٹ ہو گئے نا, ایک سواری ایک سوار ہے. زندگی کی گاڑی جب صحیح رخ پر چلتی ہے نا, منزل مقصود کی طرف چلے گی. کب چلے گی؟ جب سوار مضبوط ہو, اونٹ اچھا ہو, گھوڑا اچھا ہو. آج کی زبان میں گاڑی ہے تو آپ کو یہاں سے مینچسٹر جانا ہے, تو آپ کے مینچسٹر پہنچنے میں کیا چیز ضروری ہے؟ کہ آپ کی گاڑی ٹھیک ہو, پیٹرول اس میں ہو, آپ کو ڈائریکشن آتی ہو, سب کچھ ٹھیک ہے, اس کی سپیڈ کیسی ہے, روڈ کلیئر ہو, آپ 3 گھنٹے میں بھی پہنچ جائیں گے. لیکن گاڑی کمزور ہو, راستے میں رکاوٹ آ جائے, کچھ بھی ریزن ہو, تو ہو سکتا ہے آپ 4-5 گھنٹے سے بھی زیادہ لگا دیں. بس اسی کو سمجھ لیجئے کہ جتنی سواری مضبوط ہے نا, اتنا سوار جو ہے وہ ایزیلی کسی جگہ پہنچ جاتا ہے. اندر کا انسان مضبوط ہوتا ہے نا, تو باہر کی زندگی میں بہت خیر آتی ہے. یہ جو آج بیماریاں, دکھ, پریشانیاں, ڈپریشن, رنگ برنگی بیماریاں, اس کی وجہ یہ کہ وہ اندر کی سواری کمزور ہے. بات واضح ہوئی؟ اندر کا انسان سواری ہے اور باہر کا انسان سوار ہے. سواری مریل ڈھیلی ہو تو باہر کا انسان کیا کرے گا؟ تو اندر کی صحت بہت ضروری ہے. اب اس بات کو سننے کے بعد اگر بات سمجھ جائیں کہ جب بھی ہم کوئی گناہ کرتے ہیں, ڈس اوبیڈینسی آف اللہ سبحانہ تعالیٰ, تو ہمارے اندر کی موت ہو جاتی ہے. اللہ کی نافرمانی سے روحانی موت واقع ہو جاتی ہے. اندر کا انسان مرتا ہے, اس کے اندر کمزوری آتی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ نافرمانیوں سے, اللہ کی بات نہ ماننے سے اندر کے انسان پر فالج کا حملہ ہو جاتا ہے. اب اگر یہ فالج انسانی زندگی پر گزرے, جیسے انسانوں پہ کبھی پڑتا ہے, تو آپ دیکھتے ہیں کہ نہ جیتا ہے بندہ نہ مرتا ہے. वो ज़िंदगी ज़िंदगी नहीं कि आप 10 साल से बिस्तर पे पड़े हैं और लोग आपकी गंदगी साफ़ कर रहे हैं, और उसको आप मौत भी नहीं कहते। एक नासूर हो जाता है, ख़त्म ही नहीं होता, बल्कि ऐसे लगता है कि अगर एक तरफ एक बॉडी का एक हिस्सा ज़रा स्टिल हो गया तो कहीं ऐसा ऐसा दूसरी तरफ ना हो जाए। बिल्कुल इसी तरह से जिस तरह ज़ाहरी तौर पर इंसान कमज़ोर हो जाता है ना, तो गुनाह ना छोड़े जाए तो अंदर का इंसान भी रहते रहते फिर कतरा कतरा करके उसकी मौत हो जाती है। आप कहेंगे ये तो बड़ी स्केरी चीज़ है। जी ये स्केरी है, हमें अपने गुनाहों का असर दिखता नहीं है ना ज़ाहरी तौर पे, इसलिए हम इंजॉय करते हैं। अगर हमें पता चल जाए हमारे गुनाहों का हमारी रूह पे क्या असर पड़ता है, तो हम चीख चिल्ला के वहाँ से भाग जाएं। कि इंसान जब गुनाह करता है तो उसके दिल पे काला धब्बा पड़ जाता है, काला रंग क्या है, डिप्रेशन। फिर दूसरा गुनाह करता है, दूसरा धब्बा, तीसरा गुनाह, चौथा गुनाह, और होते होते पूरे दिल के ऊपर स्याह धब्बे पड़ जाते हैं। हत्ता कि वो इतने क्लोज क्लोज, आप छोटे छोटे स्टेन सोचिए, सफेद कागज़ पे अगर आप एक ब्लैक स्पॉट लगाएंगे तो क्या होगा, दिखेगा भी नहीं। फिर दूसरा तीसरा, अब आप सामने ये दीवार वाइट है, अगर इस पे बच्चे एक निशान लगा दें शुरू में नहीं दिखेगा, फिर दूसरा भी लग जाती, थोड़े दिनों में 15-20 निशान लगे हों तब एकदम अपेरेंटली ये दीवार उतनी वाइट नहीं लगेगी जितनी है, ग्रेज फीलिंग आएगी। लेकिन अगर कोई बच्चा बैठ के टिक 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 लगाता ही जाए तो दूर से हमें उतना हिस्सा काला दिखेगा। इसको आप अपने दिल की शक्ल बना लें। आप अपने नोट्स में एक दिल बनाएं, फिर उस दिल को बिल्कुल वाइट रखें, फिर नीचे एक और बनाएं, एक ब्लैक स्टेन लगाएं और लिखें कि ये फर्स्ट सिन है। जब भी हम पहली दफ़ा कोई भी एक गुनाह करते हैं ना तो फर्स्ट स्टेन होता है। अगर तौबा कर लेंगे ना तो माफ़ हो जाएगा, और अगर नहीं करेंगे पक्का हो जाएगा। जैसे इंक का निशान पड़ता है तो ना अगर उतारें तो पक्का रंग हो जाता है ना, इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता इंसान का गुनाह पक्का होता है। गुनाह छोड़ना है ना, इसका एक ही इलाज है, जब गुनाह शुरू हो फौरन छोड़ दें। इब्तदा में गुनाह बड़ा कच्चा होता है। इसको एक मिसाल से समझिए, जैसे आप देखिए कि एक पतला सा धागा, अब उसको अगर कोई तोड़े तो एक बच्चा भी तोड़ देगा। एक हो सकता है पर्दे में से एक धागा गिरा, आप उसको पकड़ेंगे तोड़ देंगे, इजीली टूट जाएगा। लेकिन अगर उस धागे की 20-25 डिफरेंट लेयर्स बना दें, फिर उसको बट के एक डोरी बना दें, अब उसको बच्चा तो नहीं तोड़ सकता। हो सकता है कि आप थोड़ी हिम्मत करके कोशिश करके झटके से तोड़ लें। इसी तरह वो डोरी मजबूत करते करते आप सोचिए कि किसी जहाज़ का लंगर बना दें, एंकर, जिससे जहाज़ को बांधा जाता है, तो अब उसको तो हो सकता है आपकी कैंचियाँ भी ना काट सकें। वो इतना मजबूत धागा बन जाएगा कि जो एक जहाज़ को भी अपनी जगह पर रोक लेता है। बस ये समझिए कि गुनाह शुरू में एक कच्चा धागा होता है, ईजीली छोड़ दीजिए उसको। बैड हैबिट्स आर जस्ट लाइक थ्रेड्स, उनको फीट ना करें, उनको खिला खिला के मोटा ना करें। जितना कोई गुनाह पक्का होता जाता है ना, उतना वो छोड़ना मुश्किल होता है। और आदत जब बन जाती है ना, तो शुरू में तो गुनाह बहुत बुरा होता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसमें लज्जत आती है, मज़ा आता है। एक वक्त आता है कि बस वो गुनाह फिर मज़े के लिए भी नहीं करते, बल्कि एक हैबिट बन जाती है, अर्ज शुरू हो जाती है, या आप एक और लफ्ज़ भी इसके लिए बोलते हैं, क्रेविंग होने लगती है। एक वक्त आता है कि गुनाहों की क्रेव होती है फिर। अब आप देखिए कि शराब कोई मज़े की चीज़ होती होगी, अल्लाह ना कभी किसी को उसका एक घूंट भी चखाए, लेकिन जो उसकी ज़ाहरी हैयत है, जो उसमें बबल्स हैं, जो उसमें स्मेल है, और जो वो गर्म है, क्या ख्याल है आपको मज़े की होती है? मज़े की नहीं होती, तो फिर लोग क्यों चुस्कियाँ ले लेके पीते हैं? जहाज़ों में पानी से ज़्यादा लोग शराब क्यों पीते हैं? इसकी वजह यह है कि आदत हो गई है, वो पीते हैं। मुझे ये रिसेंटली किसी से बात पता चली कि जितने भी नॉन मुस्लिम होते हैं, मेजॉरिटी जहाज़ में मोस्ट ऑफ द टाइम ड्रंक रहते हैं। क्यों रहते हैं? ताकि हमें सफ़र की लंबाई, थकन और घबराहट पता ना चले। और अभी पीछे कुछ अर्सा पहले हम एक ट्रेवल पे थे, बहुत लंबी फ्लाइट थी हमारी, हमारी अगली सीट में एक पूरी फैमिली वेस्टर्न थी, माँ बच्चे भी थे, पूरा वक्त बिलीव नहीं वो सोए रहे, बल्कि बीच में एक छोटा सा किसी जगह स्टॉप था जिसमें हमने जहाज से नहीं निकलना था, और लोगों ने आना था और फिर हमने आगे जाना था। वो लोग उस वक्त भी नहीं उठे। मेरी सीट के साथ एक उनका छोटा सा बच्चा था, ऐसे 8-10 साल का होगा, मुसलसल वो सोया रहा। आखिर मैं सोच में पड़ गई कि जाहिर है कि देखिए भूख लगती है, 8-10-12 घंटे की फ्लाइट जब बन जाए ओवरऑल, तो ये उठे ही नहीं रहे। बिल्कुल उनको होश नहीं, और जब जहाज उतरा तो उस वक्त भी बहुत आंखें मलते मलते उठा के, तो वो उनको जो भी उठे और जिस तरह से वो हुए होंगे ना, तो मुझे खौफ आने लगा कि ये क्यों इतना सोए हुए है ना। लेकिन आप देखिए कि इंसान गुनाह कर करके ना अपने अंदर को सुला देता है, जब अंदर सो जाएगा ना तो अल्लाह से बातें खत्म हो जाएंगी। मुर्दे तो नहीं सुनते ना, और मुर्दों की भी कोई नहीं सुनता। फिर ऐसे वक्त में इंसान गुनाह की लज्जत भी ख़त्म करके सिर्फ एक मजबूरी के तौर पे गुनाह करता है। वो कहते हैं ना कि मुंह को लगी भी छूटती नहीं है। हम कोई भी काम करते कहते अब क्या करें, अब आदत हो गई, अब छूट नहीं रही। और यहाँ तक कैसा वक्त आ जाता है कि इंसान फिर उससे जान छुड़ाए नहीं छुड़ता। अब ये मिसाल जहन में आ गई है, एक और मिसाल इससे थोड़ी सी आगे समझिए। कभी आपने किसी दरख्त पर लगी हुई कोई बेल देखी होगी? बेल समझते हैं, वाइन्स, यानी पतली पतली बेलें होती हैं। एक दरख्त बहुत हेल्दी है, सेहतमंद दरख्त है, उसके ऊपर एक बेल चढ़ती है। आहिस्ता आहिस्ता क्या होता है, बेल मजबूत हो जाती है और दरख्त और जो असल पौधा है ना वो सूखने लगता है। और वो बिल्कुल एक वक्त आता है कि बेल तो माशाल्लाह हरी भरी है और दरख्त बिल्कुल टुंड मुंड है। बस यही समझ लीजिए, गुनाहों की बेल जब इंसान के जिस्म के दरख्त पे चढ़ती है तो इंसान की ईमानी ज़िंदगी खुश्क होने लगती है, इसकी तरक्की रुक जाती है, इसकी हरी पत्तियां सूख जाती हैं, और एक वक्त आता है कि फिर इसको मुकम्मल तौर पे काटना पड़ता है। उस वक्त में फिर बिल्कुल नहीं रहता, फिर उस वक्त इंसान को एहसास होता है कि अच्छा मैंने क्या किया, मेरी तो ज़िंदगी की सारी कशिश ख़त्म हो गई है। और इस तरह से फिर अगर आप उस चीज़ पे आके अपने आप को नहीं रोकते तो ज़िंदगी ख़त्म। जिस तरह बेल किसी दरख्त को खोखला करती है ना, इस तरह गुनाह हमें खोखला कर देते हैं। और हम ऐसे वक्त में अपनी जान छुड़ा लें तो बेहतर है, वरना तो वो आहिस्ता आहिस्ता विल पावर भी ख़त्म होती है। आपने देखा कि जब इंसान बीमार होता है ना तो उसकी सबसे पहले विल पावर ख़त्म होती है। कहते हैं कि मरीज़ कभी बीमारी से नहीं मरता, अपनी विल पावर के ख़त्म होने से मरता है। कई आपने ऐसे लोग देखे होंगे कैंसर के मरीज़ हैं, हंसते खेलते बोलते पहनते ओढ़ती हैं, आप कहते हैं लगता नहीं कोई इतनी बड़ी बीमारी है, क्योंकि उनकी विल पावर है। और डॉक्टर्स इकरार करते हैं कि फलां जब अपने विल पावर पे ज़िंदा है। बिल्कुल इसी तरह याद रखिए, जब एक इंसान अंदर से बीमार होता है ना तो फिर उस वक़्त उसकी विल पावर कमज़ोर हो जाती है, फिर वो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो फिर जीना नहीं चाहता। शराब के नशे में धुत, फिर ड्रग्स के नशे में धुत, फिर म्यूज़िक, फिल्में, गाने, गंदगी। आज आपको जितना भी कल्चर जिसमें बड़ी पॉप एंड पता नहीं क्या कुछ फन एंड फ्रॉलिक दिखता है, असल में वो अपने आप को बचा रहे होते हैं, स्केपिज्म है। तो इंसान का सबसे बड़ा अंदरूनी मर्ज क्या है, अल्लाह की नाफरमानी, गुनाह। ये अंदर की ज़िंदगी के लिए एक जहर होता है। जहर चाहे कितनी ही अक्लमंदी से कोई क्यों ना खाए, कितनी नादानी और जहालत से कोई ना खा ले, बच्चा ही पी ले जहर वाली बोतल, उसका असर तो एक ही है ना। अब ये मिसाल जहन में आई है, यानी जिस तरह जहर को कोई गलती से खा ले, जहर को कोई किसी के मजबूर करने पे खाए, किसी को बड़े समझदारी से खाए, जहर का असर एक ही और वो क्या है, मौत। इसी तरह गुनाह एक जहर है। ये चौथी मिसाल दी है मैंने आपको, गुनाह एक जहर है कि जो अंदर से हमें खाएगा। आप ये नहीं कह सकते मैं दूसरों की मजबूरी में कर रही थी, कल क़यामत के दिन ये नहीं कह सकेंगे। फिर ये भी नहीं कह सकते अल्लाह मैं तो भोली थी, मुझे पता ही नहीं, मैं नादान थी, मैं जाहिल थी, मैं पढ़ी लिखी नहीं थी, इनको पूछ जो पढ़ते लिखते थे और सारा दिन लोगों को सताते थे, इनसे पूछ। अल्लाह कहेगा नतीजा तो एक ही है, देखिए ना डिस्प्रीन खाएंगे जान के, आपको पता ही है डिस्प्रीन है, आपको नहीं पता डिस्प्रीन है, पेट में जब जाएगी तो असर तो उसका एक ही होना है ना। क्या मैं हर बीमार हर दवा का नाम आता नहीं, बस हम खाते हैं और असर हो जाता है। इसी तरह हर गुना अपना असर ज़रूर देता है। अब ये तो है बात, इतनी तो कंफर्म है, इसमें तो किसी को शक नहीं कि गुना हमारे लिए मौत है। अब देखते हैं कि गुनाहों की सज़ा कहाँ मिलती है, आखिरत में नहीं, गुनाहों की सबसे पहली सज़ा इस दुनिया की ज़िंदगी में मिलती है। जिस तरह सूरज निकलने के बाद दिन का आना लाजमी है ना, ये तो नहीं होता कि सनराइज़ के बाद रात शुरू हो जाए। इतने ही यकीन से कहिए कि अगर कोई गुनाह किया है तो उसका असर ज़रूर ज़िंदगी में आएगा और ज़रूर उसकी सज़ा मिलेगी। अल्लाह सुबहान तआला अल आदिल है, लेकिन अल्लाह तआला का अदल और इंसाफ सिर्फ हशर के दिन पर नहीं जाके होगा, ज़िंदगी में अल्लाह का अल आदिल होना शुरू हो जाता है और इंसान इस दुनिया में अपने गुनाहों के मुताबिक सज़ा भुगतता है। سورة النساء کی آیت 123 جو ہم نے پڑھی کہ اس اللہ ابن الشیطان الرجیم من یعمل سوء یجز بہ، کہ جو بھی برا عمل کرے گا اس کی سزا پائے گا. یہ بات بالکل سچ ہے، اللہ تعالیٰ ایسی بات نہیں کرتے. اب کرتے کیسے ہیں؟ سزا ایک دم پکڑ لیتے اللہ، ادھر آپ نے گناہ کیا اور اللہ تعالیٰ فرشتے کو کہتے جاؤ اس کی جان نکالو. نہیں، کیسے کرتا ہے؟ سب سے پہلے جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو وارن کرتے ہیں، وارننگ بھیجتے ہیں. جیسے آپ کبھی ڈاکٹر کے پاس ایسی چیک اپ کے لیے گئے ہوں گے، تو ڈاکٹر آپ کو وارن نہیں کرتا، بی کیئرفل، آپ کا کولیسٹرول بڑھنے والا ہے، آپ کی شوگر لیول تیز ہو رہا ہے، آپ کا ویٹ گین ہو رہا ہے. ڈاکٹرز وارننگ دیتے ہیں نا، شروع میں دوا تو نہیں دیتے. اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ چونکہ حکیم ہے، تو وہ شروع میں انسان کو وارن کرتے ہیں. جو لوگ اس وارننگ پہ ڈر کے گناہ چھوڑ دیتے ہیں، بات ختم، اللہ معاف کر دیتے ہیں. اور بالکل ایسے ہی جیسے آپ کیئرفل ہو گئے، تو اب آپ کا ویٹ نہیں گین ہو رہا اور آپ بالکل اپنی شوگر لیول کو سب کو نارمل کرتے ہیں. ٹھیک ہے، لوگ وارننگ سے نہیں رکتے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سزا دیتے ہیں. مثال ہے، کوئی بیماری آئی، کوئی نقصان ہوا. اب جب یہ کیفیت انسان کے ساتھ ہوتی ہے نا، تو ایسا شخص جو ہے فوراً سمجھ جاتا ہے کہ یہ مجھ پہ میرے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ جب اللہ کسی کو وارن کرتے ہیں تو اس کا انداز کیا ہوتا ہے، اور مختلف لوگ کیسے اس کو سمجھتے ہیں. بات مشکل تو نہیں ہو رہی؟ آپ دیکھیے کہ آپ تجربہ کر کے دیکھیں کہ جن لوگوں کا دین سے گہرا تعلق نہیں ہوتا نا، وہ جب بھی گناہ کرتے ہیں نا، تو گناہ کر کے کیا کہتے ہیں؟ سب کرتے ہیں. ایسے لوگ جو ہے نا، ان سے کہیں کہ آپ یہ کام کیوں کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کیا کریں جی، مجبوری ہے، حالات ہی ایسے، سب کرتے ہیں جی، آج کے دور میں گزارے ہی نہیں. یعنی وہ اللہ پہ اتنے بڑے بڑے الزام لگا دیتے ہیں کہ اللہ کی اس دنیا میں آج کے دور میں کوئی سچ کے ساتھ جی نہیں سکتا اور حلال کے ساتھ جی نہیں سکتا. جرت کھل جاتی ہے، ہمت بڑھنے لگتی ہے. اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بظاہر دیکھنے میں کوئی اتنے دیندار نہیں ہوتے، لیکن وہ جھوٹ نہیں بولتے. آپ نے دیکھے ایسے لوگ، جس کو ہمارے انداز میں کیا کہتے ہیں آپ لوگ، جینٹل مین، یا جن کو آپ کہہ لیجئے کہ جو بہت ہی زیادہ ڈیسنٹ سے لوگ ہوتے ہیں، پڑھے لکھے، نماز نہیں پڑھیں گے لیکن جھوٹ نہیں بولتے. ایسے ہوتے ہیں نا، بہت انٹلیکچوئل قسم کے لوگ، ڈیسنٹ، بہت شریف شرفا. اب آپ انہیں کہیں گے کہ جی آپ جھوٹ کیوں نہیں بولتے، تو کہیں گے نہیں بھائی، جب بھی جھوٹ بولتے ہیں نا تو ہمیں کوئی سزا ہی ملتی ہے، تو ہم اس وجہ سے جھوٹ نہیں بولتے. کیا جھوٹ بولیں گے، کل کچھ ہونے لگے گا اور ہم اس کی وجہ سے مشکل میں پکڑ دیں گے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسے بندے کو نماز نہیں ملی، نماز نہیں پڑھ رہا لیکن جھوٹ نہیں بول رہا، کیوں؟ کہ نماز نہ پڑھنے کا اس کو وقتی طور پہ کوئی سمجھ نہیں آ رہا کہ مجھے نقصان ہوا ہے نہیں، لیکن جھوٹ بولنے کا نقصان اس کو دکھ رہا ہوتا ہے. تو گویا کہ کوئی جھوٹ بولے اور اللہ کی طرف سے کوئی بات آ جائے اس پہ، یہ اللہ کی رحمت ہے، یہ ہے اللہ کی وارننگ. جیسے بہت ہی پہلے کہیں میرے اہل کوئی ڈرامہ یا کوئی ناول تھا، تو اس کا ایک ڈائلاگ میری ذہنوں میں آتا ہے. ایک شخص تھا، تو وہ امانت داری سے اپنا کام کرتا تھا، افسر تھا. پھر کیا ہوا کہ اس کی بچی کی شادی کا موقع تھا، تو اس کی بیوی نے، گھر والوں نے اس کو کوئی مجبور کیا کہ کیا کریں، پھر بچی کی شادی کرنی ہے. تو اس نے دل سے بہت اپنے آپ کو برا بھلا دیکھا، کہنے لگا اچھا چلو میں ایسا کر لیتا ہوں. اس کے بعد کیا ہوا کہ جب وہ رشوت لینے کی نیت کہ چلو آج میں لے لیتا ہوں، کسی نے اس کو رشوت پیش کی، اس نے کہا میں لیتا ہوں. جو ہی وہ اسے رشوت لے رہا تھا نا، اسی وقت پولیس کا ریٹ ہوا، پولیس نے اس کو گرفتار کر لیا اور اس کو لے آف کر دیا کہ جی یہ فلاں افسر رشوت لیتے ہوئے پکڑے گئے. تو اس نے کہا کہ یا رب، یہ کیا بات ہے، لوگ تو ہر دن رشوت لیتے دیتے ہیں، وہ نہیں پکڑے جاتے، میں نے آج کوشش کی تو میں کیوں پکڑا گیا؟ اس لیے پکڑا گیا کہ اللہ نے اس کو وارن کیا کہ یہیں رک جاؤ. آج لیتا تو اس کو بری لگتی رشوت لینی، کل دوسرے تیسرے دن وہ بری نہ لگتی. تو کیا پتہ چلا، جب بندہ کوئی غلط کام کرے اور اس کے بعد اس کو کوئی ایسی چیز ملے، جیسے آپ کہہ رہے تھے شروع میں کہ ہم غلط کام کرتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا یہ ہے وہ ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ قرآن میں ایسے لوگوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جب ان کو چھو بھی جاتا ہے کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے، فوراً ہوش میں آ جاتے ہیں، تذکرو یہ کیا ہو رہا ہے، یہ ہمیں کون بیکار ہے، اعوذ باللہ. اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ واقعی خوش قسمت ہیں. ایک بڑا خوبصورت قول ہے، فضیل بن عیاض ایک بزرگ تھے، کوئی بھی نیک شخص ہے ان کی اچھی بات ہم کوٹ کر سکتے ہیں، بلکہ میں کہتی ہوں اس کو سونے کے پانی سے لکھا جائے نا تو ہم اپنے حال پہ اس کو لا سکتے ہیں. कॉल किया इनका, कहते हैं जब भी मैं कभी अपनी बीवी में या अपने गुलाम में या अपनी सवारी में कोई कोताही देखता हूँ, यानी ये तीनों मेरी बात नहीं मानते, मेरी बीवी ना माने, मेरा गुलाम मेरी बात ना माने या मेरी सवारी ही अड़ी करने लग जाए, तो मैं फौरन समझ जाता हूँ कि आज मुझसे कहीं भी अल्लाह की कोई नाफरमानी हुई है और अल्लाह ताला ने मुझे उस पर पकड़ा है। ये है अल्लाह ताला के वॉर्न करने का पहला अंदाज़, पहली तंबी। खुशकिस्मत है वो लोग जिनको समझ आ जाए कि हमारा रब हमें पकड़ा है। एक दूसरा अंदाज़ भी देखिए कि अल्लाह ताला की तरफ से मोहलत मिलने लगती है, अजाब में ताखीर हुई। उसने गुनाह जवानी में किया होता है, बुढ़ापे तक बिल्कुल मामून, कोई सज़ा नहीं मिली, हाँ बुढ़ापे में जाके पकड़ होती है। फिर ये रोता है, पता नहीं मैंने क्या जुर्म किया, मैं तो अब तहज्जुद भी शुरू कर चुका और बुढ़ापे तक अक्सर लोग 5 वक्त के नमाजी तो हो ही जाते हैं, इल्ला माशाल्लाह बात बदबخت है कि जो उस वक़्त भी ना पढ़े, तो ये और बात है। अब बुढ़ापे में उनको तकलीफ हुई, वो कहते हैं पता नहीं मुझे क्यों सताया जा रहा है, आप कोई उसको कहे भाई साहब ये आपके जवानी के गुनाहों के असर आता है, अल्लाह ताला को आपने जवानी में नाराज़ किया था लिहाजा अब अल्लाह ताला आपको उसकी पकड़ में ला रहा है। अब हुआ क्या, उसको तो भूल गया था लेकिन अल्लाह को तो नहीं भूला, अल्लाह ताला को याद होता है ना। तो ऐसे लोग जिनका माल या उनकी बीवी उनकी औलाद बुढ़ापे में उनके हाथों से जाने लगे, तो वो समझ जाए कि ये अल्लाह ने हमें पूरी जवानी मोहलत दिए रखा, और जवानी में अगर अल्लाह ना करे पकड़ आती ना, तो बंदा बच जाता है, मजबूत भी होता है स्ट्रांग भी होता है, लेकिन बुढ़ापे में जाके अल्लाह ने पकड़ा, अब माल की भी ज़्यादा ज़रूरत थी क्योंकि और कमा नहीं सकते, बीवी की खिदमत की भी ज़रूरत थी, औलाद के साथ की भी ज़रूरत थी। अब उस वक्त में जब पकड़ा तो क्या ये ज़्यादा बड़ी पकड़ हुई कि पहली पकड़ ज़्यादा थी, ये बुरी है। क्यों अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अर्ज़लिल उमर, कि अल्लाह मैं नकारा और बेकार होने वाली उम्र से तेरी पनाह में आता हूँ, क्योंकि बुढ़ापा बड़ा बुरा है। सूरह बकरा में मिसाल है कि एक शख्स था जो बूढ़ा हो गया और उसके बच्चे भी छोटे थे, उसके बाग में आसमान से एक आफत आई, सारा बाग जल गया, तो क्या तुम में से कोई चाहता कि उसके साथ ऐसा हो, तो कहा नहीं। तो हज़रत इब्ने अब्बास से पूछा गया कि ये किस शख्स की मिसाल है, तीसरे पारे के शुरू में जहाँ इन्फाक़ फ़ी सबीलिल्लाह की बातें वहाँ ये मिसाल आती है, तो लोगों ने पूछा कि ये किसकी मिसाल है, तो कहने लगे ये वो शख्स है कि जो पहले कोई अच्छा काम करता था और बुढ़ापे में उसने वो छोड़ दिया और फिर उसकी पकड़ हो गई। तो बुढ़ापे में ज़रूरत है और ज़्यादा नेमतों की, लेकिन अल्लाह बाज़ दफ़ा बंदे को जवानी के गुनाहों की सज़ा बुढ़ापे में देता है। मैं या मलसुअ युजज़ बिही, जो बुरे काम करेगा उसी वक्त अल्लाह उसको पकड़ेगा, बाज़ दफ़ा फ़ौरन पकड़ता है बाज़ दफ़ा नहीं। अब देखिए कि जवानी में गुनाह किए बुढ़ापे में तौबा कर ली, क्या फिर भी उसके ऊपर इसकी बात आएगी, इसका जवाब आप पहले दें। सवाल समझे, दिल से तौबा की होगी तो कबूल होगी, ठीक है जी। और आप क्या सोचती हैं?
और फिर आपको वो चीज दोबारा करने का वो
जी,
देखिए
कि एक बात समझ लीजिए, अनदमु तौबा, जो बंदा जवानी में गलत काम करता है और फिर उसको तौबा की मोहलत मिल जाती है ना, उस पे बुढ़ापे में कभी भी उसकी सजा नहीं आएगी, अल्लाह ने उसकी उस गुनाह पे माफ़ किया। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये भी एक अब एक अलग इशू है, मिसाल है कि जवानी में जज्बे उभरे होते हैं, लड़कियों को देखना, गाने सुनना, फिल्में देखना, अब वक्त के साथ वो जज्बे ख़त्म हो गए, अब तौबा नहीं की समझिएगा, लेकिन गुनाह छोड़ दिया है, अब क्या होगा, अब उसकी पकड़ होगी, अब वो हैरान होता है कि ये मेरे पे क्या हो गया, तो उसको कहा जाता है कि ये तुम अपने माजी को देखो, तुमने कहाँ कहाँ अल्लाह को नाराज़ किया तो उसकी सज़ा मिल रही है। क्या कभी हमने अल्लाह को इतना बारीक बीन समझा, कल हम क्या करेंगे अल्लाह को इसकी भी खबर है, और आज से 50 साल पहले या 20 साल पहले या 30 साल पहले हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर चुके हैं, अल्लाह को नहीं भूलता, अल्लाह कहता है ये भूल गए हैं, अल्लाह नहीं भूला, तुम समझते हो अजाब दूर है, अल्लाह को अजाब बड़ा करीब लगता है, ठीक है। तो क्या पता चला, जवानी में गुनाह करते थे फिर तौबा भी नहीं की और गुनाह भी छोड़ दिए, तो उन गुनाहों की पेंडिंग किस्म की सज़ा हमें बुढ़ापे में जाके मिलती है, ये अल्लाह की पकड़ है। इसी तरह एक तीसरा अंदाज़ है वार्निंग का, वो क्या है, और वो है खुफिया, हिडन। अल्लाह की तरफ से क्या होता है कि खुफिया तदबीर अल्लाह ताला करते हैं, बंदा कुछ और सोच के गुनाह कर रहा होता है, मतलब उसकी प्लानिंग कुछ और होती है। अल्लाह सुब्हान तआला उसकी प्लानिंग के खिलाफ क्या करते हैं कि उसके ऊपर नेमतों के दरवाजे खोल देते हैं, बिल्कुल अपोजिट ऑफ द फर्स्ट वन। जितना बंदा गुनाहों में बढ़ता जाता है, अल्लाह नेमतों को उस पर खोल देते हैं। सूरत अलनाम आयत 44 में आता है, फलम्मा नसू मा ज़ुक्किरु बिही फतहना अलैहिम अबवाब कुल्ली शैइन। फिर जब वो भूल गए उस नसीहत को जो उनको की गई थी, तो हम इन पर हर चीज़ के दरवाजे खोल देते हैं। आप सोचिए ना, अपने ऊपर लें, किसी भी जवान को देखें, एक तरफ वो नाफरमानियाँ कर रहे, दूसरी तरफ उसकी जॉब पहले से अच्छी हो गई, बिजनेस बढ़ गया, फ्लरिश हो गया, शादी हो गई, घर अच्छा मिल गया, तो वो क्या सोचेगा, देखा मैं पागल हूँ कि मैं नमाजें पढ़ूँ, मौलवी साहब तो आज तक उसी दो कमरे के घर में, मैं कहाँ पहुँच गया। ये बहुत सख्त किस्म की वार्निंग होती है कि जितने नाफरमानियों के दरवाजे खुलते हैं, उतने नेमतों के दरवाजे, इज्जत, ओहदे, कारोबार, जवानी, शोहरत, नफा बढ़ता है। अब उसको ये समझ नहीं आता कि मेरी नाफरमानियों पे पकड़ हो रही है, वो सोचता है कि अल्लाह खुश है तभी तो मुझे दुनिया में दे रहा है, यानी मिसअंडरस्टूड करता है। और जब वो खूब मज़े उड़ा रहा होता है, खूब नाफरमानी, हराम काम, आगे ये हो गया, दौलत, बदयानती, और जब अल्लाह ताला उसको देखते हैं कि आप ये बिल्कुल अपनी जगह पे फिट है, तो एकदम अल्लाह ताला कहते हैं फिर हम उसको खींच लेते हैं, फिर उस पर पकड़ का आता आता है। जब वो बिल्कुल मदहोश हो जाता है अपने गुनाह में, फाइजा हम मुबले सोन, फिर वो मायूस होते हैं, ये क्या हो गया, वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते कि हमारे साथ ऐसा होगा। ऐसे हालात में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है इंसान को, और वो क्या कि मैं गलत काम करके भी दुनिया में इतने अच्छे चीज़ें ले रहा हूँ, तो क्या अल्लाह मुझे आखिरत में नहीं अच्छी दे देगा। अब बाग वालों का वाक्य आता है कुरान पाक में, तो उसमें उस शख्स को यही था गलत फहमी, कहता है जब मुझे दुनिया में इतना मिल रहा है, तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि आखिरत में नहीं मिलेगा। तो कहब का वाक्य, असहाबुल बाग का वाक्य उसमें, कि अगर क्यामत आ भी गई बिलफर्ज, रोदित तू इला रब्बी, मैं इससे भी बेहतर पालूंगा। ये गलत फहमी होती है। और बाज दफ़ा होता पता क्या, कोई नेकी करता है, जवानी में नेक है, आपकी बच्ची, आपका बच्चा, बचपन से देखा आपने जवानी में, बहुत नेक नेक, आपके उसी बच्चे पे आजमाइश शुरू आ जाती है, उस बेचारे को जॉब ही नहीं मिलती। लोग कहते हैं जी मौलवी साहब क्या नमाज़ें पढ़ते रहेंगे सारा दिन, को क्या जॉब दें। खैर, आपका जवान बच्चा जॉब लेस हो गया, रिश्ते ढूंढ रहे हैं, रिश्ता ढूंढ रहे हैं, कोई कहता लो मौलवी को क्या दे रिश्ता, या कहीं हुआ हुआ था तो वो कहते हैं जी लड़का बड़ा नेक हो गया, अब इसको पीछे कर दो। अब यहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, जितनी नेकी करता हूँ उतनी मुसीबतें ज़्यादा आ रही हैं, तो फिर इसका था कि नेकी छोड़ दूँ। हालांकि आपको पता है कि इस बंदे के साथ अल्लाह का मामला खुफिया है, बज़ाहिर इसको दुनिया में नुकसान मिल रहा है, लेकिन अल्लाह सुबहाना ताला इसको कोई बहुत बड़ी खैर देना चाहता है। छोटी छोटी जॉब से निकाल कर अल्लाह हो सकता है उसको अपने ही किसी कारोबार पर डाल दे, अल्लाह उसको बहुत दौलत दे दे। इधर दो चार छः लड़कियों से जो उसकी मामला नहीं बन रहा, कोई लड़की अल्लाह उसको लड़की नहीं देता, कोई अल्लाह ने दूर बड़ी ईमान वाली लड़की तैयार की हुई है, एक ख़ास वक्त गुजरेगा अल्लाह ताला उसकी शादी वहाँ करवा देंगे। बस बच्चियाँ आपने नहीं देखा 30 के करीब हो जाती हैं, उनकी करीब की उम्र की लड़कियों के दो दो बच्चे भी हो जाते हैं, और लड़की बड़ी नेक होती है, तो आप परेशान होते हैं, कहते समझ नहीं आता ये बच्ची इतनी अच्छी है, इसका रिश्ता क्यों नहीं हो रहा। वजह क्या है कि अभी नहीं हो रहा, ये 30 से दो ऊपर 32 की होगी ना, फिर एक बड़ा अच्छा लड़के का रिश्ता होगा जो तकरीबन 35 साल का है। अब पहले अगर वो रिश्ता भेजता तो आपने करना नहीं था, अब कर देंगे, और उस बच्ची की उस अच्छे लड़के से शादी हो जाती है। तो ये अल्लाह के मामले हैं। आप देखिए कि ऐसे तीरों को सोचे ना, हर गुना एक तीर है जो हम पे लगता है, और उसके मामले में अल्लाह सुब्हान तआला का मामला जो है वो दूसरी तरफ आने लगता है। तो कभी भी किसी चीज़ को ज़ाहरी तौर पर ना सोचें, अल्लाह तआला की नाफरमानी का जो सबसे बड़ा नतीजा दुनिया में निकलता है ना, जो इंसान के लिए बहुत नुकसानदेह, वो क्या है कि इंसान एहसान फरामोश हो जाता है ना, शुक्रा खाता अल्लाह के, बात शैतान की मानता है, नेमते अल्लाह की और ना कदरी करता है, हत्ता कि उसकी बातों को भी छोड़ने लगता है। एक वाक्या है इब्राहिम बिन अदम का, आपने नाम सुना होगा। एक नौजवान इनके पास आया, कहने लगा कि क्या करूं हजरत, अल्लाह से डर भी बड़ा लगता है लेकिन गुनाह छुटता ही नहीं है, कोई ऐसा इलाज बताइए कि गुनाह भी करता रहूं और अल्लाह की पकड़ से भी बच जाऊं। सुभान अल्लाह। तो इब्राहिम बिन आदम जो थे, उन्होंने बड़े प्यार से उस नौजवान के कंधे पे हाथ रखा, करीब किया, फिर कहा बेटा मैं तुम्हें चंद बातें बताता हूँ, इन पे अमल कर लो तो जो तुम चाहते हो वो हो जाएगा। अब नौजवान तो आपकी तरह खुश हो गया होगा कि हम भी सुने जल्दी से छट छट, ये कौन से काम है कि खाएं भी और मोटे भी ना हो। तो उसने कहा कि बेटा पहली बात तो ये है कि ऐसी जगह जाके रहना शुरू कर दो जहाँ अल्लाह ना देख रहा हो, बस फिर जो मर्जी करो मौजे मनाओ। कहने लगा ये तो नहीं हो सकता, वो ज़ात तो ऐसी है कि जो इंसान को हर जगह देख लेती है। तो कहा फिर देख लो वो जगह तो तुम्हें छोड़नी पड़ेगी, यानी अगर ये एहसास हो जाए ना कि मुझे रब देख रहा है तो बंदा कभी नाफरमानी नहीं कर सकता। सूरह फजर में आयत 14 में आता है इन्ना रब्बक लबिल मिरसाद, बेशक तेरा रब तो तेरी घात लगाए हुए है। लफ्ज़ घात जानते हैं क्या होता है? जब शिकार करना होता है ना जानवर ने, तो उससे पहले वो स्केरी नज़रों से उसको देखता है दूसरे को। कभी शेर की आंखें देखी होंगी, झपटने से पहले वो यूं देखता है यूं, फिर वो बिल्कुल उसको जज कर रहा होता है कि मैंने कहाँ से इसको पकड़ना है, टारगेट करना है। और वो इस तरह से फिर उसको पकड़ता है कि इंसान हिल नहीं पाता। शिकारी शिकार ऐसे थोड़ी करते हैं, जाल डालते हैं, तीर फेंकते हैं ऐसी जगह से कि समझ नहीं आता। तो अल्लाह कहता है कि मैं तुम्हें देख रहा हूँ, मुझे पता है तुम क्या करोगे। यालमु खाइनतल आयुनी वमा तुख्फिस सुदूर, सूरत मोमिन आयत 19 में आता है, वो जानता है आंखों की चोरियों को, ये जो निगाहों से गंदी चीज़ें देखते हो अल्लाह को पता है, और जो कुछ सीनों में छुपा है उसका भी अल्लाह को पता है। तो दिल के अंदर की बातों को अल्लाह जानता है। सूरत मुजादला में आप पढ़ के देख लें, अल्लाह कहते हैं तुम दो होते हो तीसरा मैं हूँ, तुम तीन होते हो चौथा मैं हूँ, तुम चार होते हो पाँचवा मैं हूँ। तो अल्लाह अपने इल्म और अपनी बसारत और समात के साथ हर बंदे के साथ है। आप अकेले हैं घर में या लोगों के बीच में, कमरे में है, कहीं भी है, अल्लाह ताला हर जगह आपको देखते हैं। तो उस शख्स ने कहा भाई ये तो मुमकिन ही नहीं है कि मुझे अल्लाह देखे ना। तो कहा कि फिर तुम ये नहीं हो सकता कि तुम गुनाह करो और तुम्हें फिर उसके बाद पकड़ना है। हुआ माँ को मई न माँ को तुम जहाँ भी होते हो तुम्हें देखते। सूरह हदीद के आयत नंबर 4 में आता है कि अल्लाह तुम्हारे साथ होता है। अल्लाह अकबर, युहासिबकुम बिही अल्लाह, यानी अगर तुम जाहिर करो या छुपाओ अल्लाह तुमसे उसका हिसाब लेगा। यानी आप कभी इस बात पे गौर करें ना तो दुनिया का नक्शा बदल जाए अगर लोगों को इसका यकीन आ जाए। हमारी सारी मुनाफ़त, हमारी सारी सुस्तियाँ, हमारा लेजीनेस और अल्लाह के नाम को इतना लेयर लेना, ये किस बात की दलील है? कहते अल्लाह गाफिल है, नौज़ु बिल्ला, उसको क्या पता मैं क्या कर रहा हूँ, ऐवें नेकी कर दूँ जाके ना किसी को पता ना कुछ। हम अपने शऊर से सोच रहे होते हैं कुछ नहीं होता, मेरा क्या बिगड़ना है, मुझे कौन सजा देगा, मेरा कौन कुछ बिगाड़ सकता है, मैं ताकतवर हूँ, मैं गुनाह कर सकता हूँ। अल्लाह कहता नहीं, इन अख्ज़हु अलीमुन शदीद, सूरह हूद आयत 102 में आता है कि बेशक अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है। जी जी इनका सवाल ये है कि बाज़ दफ़ा दिल में इस तरह के उल्टे सीधे ख्यालात आने लगते हैं, तो उसके बाद इंसान सोचता है कि इसका भी पकड़ है। तो सहाबा कराम ने भी ये बात पूछी थी इस बात पे कि युखासिबकुम बिही फिल्ला, कि अल्लाह तुमसे इसका हिसाब लेगा। तो उन्होंने कहा अल्लाह के नबी बाज़ दफ़ा तुम्हारे दिल में ऐसे ऐसे ख्यालात आते हैं कि हम जल के राख हो जाए, ये बेहतर है बजाय इसके कि ज़ुबान पे उस बात का जिक्र करें, यानी बहुत ही बुरे ख्याल आते हैं। तो क्या इसका भी हिसाब है? तो कहा नहीं, ये वसवसा है। अगर आप देखिए दिल में कोई बुरा ख्याल आता है ना, आप उस पर उस बिल्ला पढ़ें, अपने आप को बचाने की कोशिश करें, तो बल्कि सवाब होगा। मसला क्या है कि जब दिल में बुरा ख्याल आए तो हम उसको ले के चल ही पड़ते हैं, च्विंगम की तरह उसका सिरा पकड़ा फिर दूर खींचते ही जाते हैं, ये ठीक तरीका नहीं है। और याद रखिए जब अल्लाह बंदे की घात में होता है ना, तो फिर पकड़ता कैसे है? जब अल्लाह के अजाब का कोड़ा बरसता है बंदा हिल नहीं सकता। कौम समूद कौम आद के तस्करे आते हैं सूरह फजर आयत 13 में कि वसब्ब अलैहिम रब्बुक सौत अजाब, बस बरसा दिया उन पर तेरे रब ने अजाब का कोड़ा। ये अपने दौर की बड़ी बड़ी कुव्वतें थी, सुपर पावर्स थी, मस्तियां करती थी और सोचती थी कि हमें किसने पकड़ना है, हम बहुत स्ट्रांग हैं। लेकिन जब अल्लाह ने पकड़ा तो अल्लाह कहते हैं कि फहल तरा लहुम मिम बाकिया, क्या तुम्हें आज उनमें से कोई बंदा भी बाकी दिखता है? तो जितनी बात अभी हुई है ना उसके लिए जहन में रखिए कि गुनाहों की सज़ा मिलती है। बाज़ दफ़ा जवानी में बच्चियां गलतियां करती हैं, फिर जब बड़ी उम्र होती है अपने घरों में जाती हैं सज़ा मिलती है। माँ बाप की नहीं मानती बच्चियाँ बात, बच्चे भी नहीं मानते। उस वक्त तो अल्लाह खामोशी से दरगुजर करते हैं, जब वो खुद माँ बाप बनते हैं ना, फिर उनके ऊपर ऐसी पकड़ आती है, फिर समझ नहीं आता, लेकिन समझ आ जाती है बात बात में कि ये चूंकि हमने अपनी माँ के साथ किया था तो हमारे साथ ये हो रहा है, चूंकि हमने बाप के साथ किया था तो हमारे साथ ये हो रहा है, तो करें क्या फिर। अब ये थोड़ी सी बात साथ साथ चलती जाएगी कि करें क्या, अल्लाह तो पकड़ने वाला है, अल्लाह ने तो बहुत कुछ दिया है, तो सबसे पहली नियत ये करें कि मैंने अल्लाह की नेमतों को दुरुस्त इस्तेमाल करना है, ठीक इस्तेमाल करें। हमारे पास कितनी नेमतें अल्लाह की, देखने से लेके सुनने से बोलने से हाथ से, अल्लाह का तवाइन तउद्दु नेमत अल्लाह ला तुहसुहा, गालिबन सूरह इब्राहिम की आयत है कि अगर तुम अल्लाह की नेमतों को गिनना शुरू कर दो तो तुम गिन नहीं सकते। जिस बंदे में अल्लाह की नेमतों की कदरदानी होगी ना, उसका दिल ही नहीं चाहेगा गुनाह करने को। मिसाल देती हूँ कि अगर आप अपनी किसी दोस्त की गाड़ी बोरो करके यहाँ आई हो कि चलो मैं इस दर्स को सुन लूँ, मैं जाके दर्स सुनाती हूँ, क्या आप उसकी गाड़ी को गंदा करेंगी, टक्कर मारेंगी, गैस अगर भरी हुई थी तो खाली करके देंगी? नहीं। आप क्या, अपनी गाड़ी पे 10 चीज़ें लग जाए खैर होती, किसी की गाड़ी पे एक निशान पड़ जाए कहते हैं अगले की गाड़ी है, क्योंकि आपको एहसास है कि ये गाड़ी की नेमत आपकी दोस्त ने आपको दी है। यही एहसास बंदे को अल्लाह की नेमतों के साथ हो कि जो नेमत दे रहा है वो छीनना भी जानता है। गलत इस्तेमाल करेंगे ना, अगली दफ़ा कोई नहीं देगा आपको, उस वक़्त मुरव्वत में चुप भी हो गया, अगली दफ़ा बहाना बना देगा, तो आप समझ जाएंगे कि ये देना नहीं चाह रहे। तो जो रब देना जानता है वो छीनना भी जानता है। आज सेहत दी हुई है ना उसने, नाफरमानी में इस्तेमाल करते हो, चलो किक आउट, भाग जाओ। आंखें दी अल्लाह ने तुम्हें, नाफरमानी की चीज़ें देख रहे हो, अल्लाह इन आंखों को कमज़ोर कर देगा, जवानी है अल्लाह उसे दूर कर देगा। आज अल्लाह ने औलाद दी भी है, अल्लाह औलाद वापस भी ले सकता है। कौन सी नेमत है मेरे और आपके समेत आज इस वक्त मेरे पास, जिसके बारे में मैं 100% कहूँ कि ये मुझसे कभी नहीं छीन सकती या कोई नहीं छीनेगा? और कितना है कमज़ोर इंसान, इतने खतरों के बावजूद अल्लाह की नहीं मानता। आप देखिए, आप इस मुल्क में रहते हैं, आपको यहाँ का पासपोर्ट मिला, यहाँ का वीज़ा मिला, बस रिलैक्स हो गए? नहीं। क्या आप कानून तोड़ते हैं इस मुल्क का? क्या आप कभी कोई गलत काम करते हैं? आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया 2-4 साल की कोशिशों से, तो क्या ड्राइविंग लाइसेंस मिल गया तो क्या आप ये गवर्नमेंट आपसे लाइसेंस वापस नहीं ले सकती? आप 2-4 दफ़ा ज़रा गलत हरकतें करें, आपका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये एहसास फिर हमें सही गाड़ी चलाने पे माइल करता है ना। इसी तरह जब बंदा अल्लाह की नेमतों को सोचता है ना कि अल्लाह दे के ले भी सकता है, तो इंसान सीधा हो जाता है। अब ये सारी बातें जो इब्राहिम बिन अदब ने उसको कही कि उस जगह पे तो मैं रह नहीं सकता, तो कहा अच्छा ठीक है, तो ख़त्म है। कहने लगा कोई और तरीका बताएं। कहा ऐसा करो, तुम जो मर्ज़ी करो और तुम्हें उस पर पकड़ना है, तुम ये करो कि अल्लाह के दिए हुए में से उसका रिस्क खाना छोड़ दो, किसी और का रिस्क ले लो, किसी और से लो, फिर उससे खाओ पियोगे तो उसकी बातें मानते रहो, शैतान से मांग लो रिस्क, तो फिर अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ेगा। तो उसने कहा कि ये तो नहीं हो सकता कि मैं अल्लाह के सिवा किससे लूँ, अल्लाह के सिवा तो कोई दे ही नहीं सकता, वह रज़ाक है। कहा अच्छा बेटा, फिर एक काम करो कि जब मौत का फरिश्ता तुम्हारे पास आए ना, एंजल ऑफ डेथ, तो उसको कह देना कि मैंने अभी नहीं जाना, मुझे थोड़ी सी मोहलत दे दो ताकि मैं तौबा करूं। कहने का ये कैसे हो सकता है, मौत तो जब आती है एक लम्हे की तकदीम और ताखीर ही नहीं होती। सूरह यूनुस आयत 49 में भी आता है, इजा जा जलुहुम, जब उनमें से किसी का वक्त मुअय्यन आ जाता है, फला यस्ताखिरूना, फिर बिल्कुल भी एक घड़ी की ताखीर नहीं करते, फला यस्तकदीमून, और ना आगे जाते हैं। कितने प्रोग्राम बना के इंसान घर से निकलता है, ये लेना है देना है, रास्ते में गोली चलती है, गोली का शिकार होता है, उस बंदे की जगह उसकी लाश आ जाती है घर में। कितने प्लान बना के आप यहाँ से जाते हैं पाकिस्तान, ये करना है वो करना है, ये करूँगा वो करूँगा, वहाँ जाके वापस ही नहीं आ पाते। आप तो पता नहीं क्या क्या सोच रहे थे, फरिश्ता आप पे हंस रहा होगा कि इसका तो कफन तक बिग बाज़ार में आ चुका है और ये अभी तक चल फिर रहा है। तो मौत के फरिश्ते को तो आप दूर नहीं कर सकते। कहा अच्छा फिर क्या करूं? कहने लगे अच्छा ये काम फिर कर लो, जब मौत आ ही जानी है अल्लाह के हुक्म पे, तो कब्र में चले जाओ और मुनकर नकीर जब आए तुम्हारा हिसाब लेने, तो उनको कहना तुम नहीं अंदर आ सकते, तुम्हें इजाज़त नहीं मेरी कब्र में आने की। कहने लगे भाई ये कैसे हो सकता है, क्या वो मेरी मर्जी से आएंगे? अच्छा, तो फिर ऐसा कर लो कि जब जहन्नुम की पुकार लगे कि जहन्नुम में जाओ, तो कह देना मैंने नहीं जाना। कहा ये भी नहीं हो सकता। कहा जब ये सब कुछ नहीं हो सकता, अब इतनी बातें करके उस बंदे का दिल जरा नरम किया तो कहा कि मेरे बेटे, जिस अल्लाह के हम इतने मोहताज हैं, तो क्या उसकी नाफरमानी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती, हया नहीं आती कि इतना कुछ लेकर एहसान फरामोशी करते हो? देखिए ना, तबलीग का असर हुआ ना, अब उसका दिल नरम हुआ। कहने लगा आज आपके सामने तौबा करता हूँ कि मैं गुनाह नहीं करूँगा। तो फिर हम भी सोचें, खाएं अल्लाह का और नाफरमानी करें, तो कौन सी ज़मीन हमें जगह देगी और कौन सा आसमान हमें दुनिया में पनाह देगा? अभी तक हमने जो बात देखी है ना, वो ये देखी है कि गुनाह की सज़ा मिलती है, ठीक है, इसी के एंगल थे। एक और भी सबब समझिए गुनाह का, और वो क्या है कि गुनाहों के सबब बरकत उठ जाती है। ज़ाहर सज़ा नहीं मिल रही कोई, लेकिन जो नेमते पास है उसको इंजॉय नहीं कर सकते आप, उसका बवाल पड़ता है। मसलन सबसे पहले आप देखिए कि नेमतों में नेमत है ज़िंदगी की, ज़िंदगी से बरकत चली गई, ऐसे ज़िंदगी गुजर जाती है। आप पिछले 5 साल से आज तक सोचिए क्या कमाल किया आपने। अगर आप यंग हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 बच्चे पैदा हुआ होगा, और या जो पिछले साल 5 साल पहले हुआ था, आज वो बच्चा 5 साल का होगा, स्कूल जाना शुरू हो गया होगा। क्या तीर मारा हमने पिछले 5 साल में? अल्लाह के नबी सल्लम ने तो 5 साल में कहाँ तक अल्लाह का दीन पहुँचा दिया, कितने लोग दीन पे आए। आज भी कई नेक लोग हैं जो 5 साल में अल्लाह के दीन के कितने काम कर लेते हैं, हमने क्या तीर मारा? तो मतलब क्या हुआ कि हमारी ज़िंदगी से बरकत चली गई। औलाद है, चलिए बहुत बड़ी नेमत औलाद है ना, 5 बच्चे, लोग 5 बेटे हैं आपके, मिसाल है, बच्चे तो छोड़िए, बेटे, दुनिया से पूछिए ज़रा, वो कहेंगे ये 5 बेटों की माँ है। लेकिन आप पूछिए अपने आप को, उनमें से कोई बच्चा आपके लिए खुशी का सामान नहीं है? मानते ही नहीं है बात, और ही ज़्यादा उनकी प्रॉब्लम है। बच्चे हैं, ठंडक नहीं है, भी तो कोई दूर है तो कोई इधर है, तो कोई आपस में सेटिंग नहीं। हर बच्चे का नया गम, बच्चा अच्छा है तो उसको कोई गम लग गया, बीमारियां हो गई, दौलत, घर, बीवी, शौहर, इन सब चीज़ों में से बरकतें निकल जाती हैं। बज़ाहिर सब कुछ होता है डमी, घर खैं, घर में बैठे हुए के मूड सूझे हुए, चेहरे ही सूझा हुआ, उधर मुंह बिगाड़ के बैठा, उधर बैठा हुआ, ऐसे लगता है जैसे एक नहुसा सी नहीं होती। आप इसके ऊपर कभी भी 25 दिसंबर के करीब कभी रात को बाहर निकले, मैं बिल्कुल अपनी फीलिंग बता रही हूँ, कोई फतवा नहीं दे रही, इधर अमेरिका मेरे बहुत साल, तो जिस तरह पाकिस्तान में हमारे लोगों में भी खुशी के मौके पे लोग लाइटिंग करते हैं ना, तो अमेरिका में जूँ ही दिसंबर का महीना शुरू होता है ना, तो ये गोरे जो होते हैं ना, अपने घरों के बाहर ही, यानी जो लॉन्स हैं या घर के बाहर ही, क्रिसमस लाइट्स लगाते हैं, जो जितना कर सकता है, लाइटें भी लगी होती हैं, ट्रीज रखे हुए हैं, कुछ भी हैं। बिलीव मी, हम जब जाते थे, अपनी मेरी सास है ना, तो उनके घर के पास तो पूरी गली ऐसी थी ना, वैसे ही वहाँ बहुत ही, मतलब कोई दिखता नहीं बाहर, तो मैं जब भी गुजरती थी बाहर, यकीन करें लाइटें पूरी चली हुई हैं, सबज और गोल्डन, लेकिन वहशत टपकती थी, घर ऐसे अंदर लगते हैं जैसे वीरान। तो मुझे ऐसे, मैं अपने हस्बैंड से अक्सर कहती थी कि हम अपने मुल्कों में कभी किसी के घर के बाहर लाइटें, बत्तियां जलती देखें ना, तो एकदम खुशी का एहसास होता है दिल में, क्योंकि शादी है। लेकिन मैं इधर से गुजरती हूँ तो मेरा दिल बंद होता है, क्योंकि ये मुझे पता है कि अंदर देखना कोई एक बुढ़ा बैठा होगा, एक बुढ़ी होगी, या दोनों होंगे, या एक होगा, बच्चा तो है ही कोई नहीं अंदर, खौफ आता है, तुम तो
भी वीरानी लगती है।
वीरानी। और मुझे ऐसे लगता है कि ये उनका घर नहीं, उनका दिल है। इस तरह काफिर का दिल बज़ाहर बड़ा पंपी शंपी ग्लैमरी और इधर जा उधर जा, लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता, कसरत है, बरकत कोई नहीं, गिनती में लाखों हैं करोड़ों हैं, कोई बरकत ही नहीं है। ईजी कम ईजी गो वाली बात है, वजह क्या है कि गुनाहों की नहुसत ने जिंदगी का रस चूस लिया। इसी तरह आप देखिए कि खाना पीना कितना, यहाँ आप और मैं जिन मुल्कों में रहते हैं, आप बता सकते हैं कि कभी हम जर्म्स वाला खाना खाते होंगे, एक्सपायर खाना खाते होंगे, गले सड़े फल कभी खाए आपने, मक्खियाँ बैठी हुई फ्रूट चाट कभी खाई? कितना हेल्दी फूड है इधर, इधर से मतलब पूरे वेस्ट में, अमेरिका कनाडा से लेके पूरे वेस्टर्न कंट्रीज़ में, लेकिन फिर यहाँ तो बीमारियाँ होनी नहीं चाहिए थी। फिर तो भाई आपके बच्चे कभी बीमार ना हो, सब डॉक्टर्स बन, हॉस्पिटल बन, साइकाट्रिस्ट बन, पागल खाने बन, क्योंकि आप तो इतना हेल्थी फूड ले रहे हैं, لیکن بات آپ کو میری کہتے اور سنتے وقت بھی اندازہ ہو رہا ہوگا کہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے. اتنے وہاں بیمار نہیں ہیں جتنے یہاں. کل کوئی سسٹر تھی, بات کر رہی تھی اپنی کسی اور سسٹر سے, تو میں بھی بیٹھی سن رہی تھی, تو کچھ اس طرح کی تھی کہ اتنا مشکل ہے یہاں علاج کہ ہاسپٹلس میں کتنے گھنٹے بیٹھ بیٹھ کے باری آتی ہے. تو کہنے لگی کہ آپ بیچ میں ویکینڈ آ گئے, جیسے آج بھی سیٹرڈے تو کل سنڈے, تو کہنے لگی آپ منڈے پہ بات چلی گئی ہے نا, باری نہیں آئی. تو پھر ایک دوسری کو کہہ رہی تھی کہ ان کو چھٹی دیتے ہوئے سوچنا چاہیے کہ اگر کوئی سیٹرڈے سنڈے میں بیمار ہو جائے تو کیا ہو. مطلب وہ جل رہی تھی اس بات پہ کہ اب منڈے تک میں انتظار پھر کروں گی, پھر جا کے لائنوں میں لگ جاؤں گی. اتنے مریض ہیں ادھر, تو کدھر گئی وہ صحت؟ برکت اٹھ گئی, پیسے میں برکت. دیکھیے آپ کے ملک میں, ہمارے ملک میں اتنی مہنگائی کے باوجود بھی, اتنی مہنگائی کہ واقعی یہ ایک الگ ایشو ہے, اس کے باوجود بھی وہاں 5,000 روپے میں آپ جو کھانا پانی لاتے ہیں اس میں ایک فیملی کھا لیتی ہے, چلو گزارا کر کے 15-20 دن کا خرچہ. یہاں آپ ذرا جب گروسری لے کے آتے ہیں تو آپ ذرا اس کا حساب لگا کے تو دیکھیے مہنگائی کتنی ہے. یہاں نہیں ہمیں لگتی, لیکن آپ اس کو ذرا دوسری کرنسی میں ڈال کے تو دیکھیے کہ آپ ایک دھنیے کی گٹھی جو ہے وہ 150 روپے کی لے کے جا رہے ہیں گھر, تو آپ کو کوئی کیا کہے گا. جو بات کہی اتنی بات سے آپ متفق ہیں؟ متفق ہے نا. اب دیکھیے کہ شیطان جو ہے نا ہمارا ابدی دشمن ہے, اس نے خود بھی نافرمانی کی تھی, ہمیں بھی نافرمان بنانا چاہتا ہے. شیطان جہاں بہت سارے جال بنتا ہے نا, اس میں اس کا سب سے بڑا جال ہمارے ساتھ پتہ کیا ہے؟ کبھی ہمیں ہمارے گناہوں کی طرف جانے نہیں دے گا. سوچ تک نہیں ہماری جاتی کہ میں نے کیا کیا. کبھی بھی کچھ مسئلہ ہوگا نا کہیں نظر لگ گئی, کسی کی بد دعا لگ گئی, اچھا کسی نے جادو کر دیا ہوگا, کسی کیا لگی. یعنی اکثر جب خرابیاں کو تکلیفیں آتی بھی ہیں نا, تو شیطان فوراً دل میں ڈالتا ہے یہ فلاں بڑا گھر گھر کے دیکھ رہا تھا اس کی وجہ سے نظر لگی ہے. کبھی نہیں کہے گا کہ تم نے بھی تو کوئی کیا ہے, یہ تمہارے بھی تو کسی گناہ کا وبال ہو سکتا ہے. اپنے بجائے دوسری طرف اور توجہ لے کے جاتا ہے. نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان اس کی باتوں میں آ کر پھر اور زیادہ چوڑا ہوتا ہے. اس لیے کبھی کوئی مصیبت آئے تو کیا کریں, اپنے گناہوں کو دیکھیں. تو دو چیزیں دیکھی ابھی تک اگر اوور آل ہم دیکھیں, نمبر ایک کہ گناہ کی نافرمانی کے وجہ سے انسان اللہ کے عذابوں کا شکار ہوتا ہے. دوسری چیز ہم نے دیکھی ہے کہ نافرمانی کے ساتھ انسان کی زندگی سے برکت اٹھتی ہے. تیسرا ایک بہت بڑا اثر ہمارے اوپر گناہوں کا ہوتا ہے, بے سکونی, سکون چلا جاتا ہے زندگی سے. آج ہر بندہ سکون چاہتا ہے, پیس کتنا معروف نام ہے, خوشی نہیں رہتی. گناہ کی زندگی میں نہ تو برکتیں ہیں اور نہ خوشی ہے, بلکہ اس کے اندر سے ایسے سکون چلا جاتا ہے کہ بالکل بے چین ہے. جیسے آپ نے کبھی اپنے کھانے پکانے کی ڈشوں کے نیچے چھوٹے سے پائلٹ فلیم چلائے ہوں گے نا, تو وہ کھانا لوگ کھاتے بھی رہتے ہیں نا, تو مسلسل ایک چھوٹی سی نیچے لائٹ ہوتی ہے جو اس کھانے کو گرم رکھتی ہے. اسی طرح ہر گناہ کے ساتھ انسان کے اندر ایک چھوٹی سی آگ لگ جاتی ہے جو مسلسل اس کو جگائے رکھتی ہے. بے چینی, تکلیف ہے, پریشان. کچھ کر لیں آپ, ہالیڈے پلان لے لیں, آپ بیچ پہ چلے جائیں, آپ سب کو چھوڑ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ دوسرے ملک چلے جائیں, آپ دیکھیں گے خوشی نہیں ملتی. گلٹ, پریشانی, پور فضا ماحول میں جائیں آپ, کینڈل لائٹ ڈنر کر لیں آپ, 25 پاؤنڈ کے بفے پہ چلے جائیں, 5-سٹار ہوٹل میں جا کے 2 راتوں کے لیے رہ آئیں, کچھ کر لیں, لیکن خوشی نہیں ملتی. وجہ کیا ہے؟ کہ اندر وہ گناہوں کی بتی بجھل رہی ہے جو آپ کو گرم کرتی ہے. اس کو بجائیں گے تو پریشانیاں ختم ہوں گی, پھر آپ محسوس کریں گے کہ اصل جینا یہی ہے. قرآن پاک میں آتا ہے کہ جو کوئی مرد ہو یا عورت اچھا عمل کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً, اللہ اس کو پاکیزہ زندگی دیتا ہے, طیب زندگی. آپ دیکھیے بہت گلیمری زندگی نہیں بھی ہوگی اگر آپ کی نیکی کے کام کر رہے ہیں, اگر آپ گناہ سے بچ رہے ہیں, لیکن ایک فائدہ ضرور ہوگا. ایک چیز آپ لازمی دیکھیں گے, آپ کبھی میری اس بات کو آزمانے کے لیے حرم میں اگر جائیں, وہاں کے امام ہیں نماز پڑھتے ہوئے, یا کوئی یہاں بھی نیک مبلغین ہوتے ہیں, بہت سارے لوگ سپیچز دیتے ہیں. ایک چیز میں نے جو کامن دیکھی ہے اپنے شعور کے ساتھ, کہ جو لوگ نیکی کا کام کرتے ہیں ان کے چہروں پہ ایک بہت سکون ہوتا ہے. یہ نہیں کہ وہ خوبصورت بہت ہوتے ہیں یا وہ کوئی لائک رنگ ان کا گورا ہوتا ہے, मेरे जहन में इस वक्त ये बात करते हुए पता कौन आ रहे हैं, आज के दौर के जितने कन्वर्ट्स प्रीचर्स हैं, आपने भी नाम सुने होंगे ना, खालिद यासीन साहब के शायद आपने नाम ना सुना हो, इधर मैंने इतना नहीं उनको सुना, अमेरिका में काफ़ी उनकी डीवीडीज और चलती हैं, ऑस्ट्रेलिया से भी उनका कुछ ताल्लुक है, ब्लैक है हाँ जी। कभी इनकी चेहरों पर चमक देखी है आपने? क्या मतलब ये गोरे हैं इसलिए चमकते हैं? एक
कहते हैं अंदर से
ऐसी
अपने अंदर से
अंदर,
चमक
वही वो शुरू बात का मिसाल समझ लेना कि अंदर सवारी मजबूत है तो अंदर चमक है, तो करें फिर क्या। नंबर एक सच्ची तौबा, नाफरमानियों से तौबा। दूसरी बात मुहासबा, चेक करें मैं कहाँ क्या खराबी कर रही हूँ, मैंने कहाँ कहाँ अपने जिस्म के किस किस उज्व को रोगी किया हुआ है, और अल्लाह ने हर बीमारी का इलाज बनाया है तो गुनाहों की बीमारी का इलाज सच्ची पक्की तौबा है। कोई बंदा सच्चे दिल से अगर ये कहे ना कि अल्लाह मैं अब आज के बाद ये गुनाह नहीं करूँगा, तो आप देखेंगे उसको ऐसे लगेगा कि अंदर एक सुकून है, वो जो फ्लेम था ना गुनाहों का अंदर, वो बुझेगा और साथ ही सुकून मिलेगा। और आप देखेंगे कि ये जो आज हम हर वक्त हालात का रोना नहीं रोते, बिजली नहीं, पानी नहीं, महंगाई बढ़ी है, ये नहीं, जंग हो रही है, ये है वो है, इधर रहते हैं तो इधर के मसले और तरह के हैं, यहाँ भी कौन सा सुकून है। जिनके पास है घर है तो घरों के कोई बिल आए रहते हैं, बिजलियों के बिल, गाड़ियों के बिल, इंश्योरेंस आ गई, टैक्स लग गया, ये सुनते ही रहते हैं ना कहानियाँ लोगों से। आप महसूस करेंगे कि ये सब कुछ एक लम्हे में हमारी ज़िंदगी से चला जाएगा, और सुकून मिलेगा जब सच्चे दिल से हम तौबा करेंगे। और जब तौबा करता है बंदा तो ऐसे हो जाता है कि जैसे वो आज पैदा हुआ है। अल्लाह के नबी को ये बात अल्लाह ताला ने बता दी कि जब एक बंदा गुनाहों से तौबा करता है तो अल्लाह को उससे ज़्यादा प्यारा लगता है जिसने कभी गुनाह ना किया हो। सही रिवायत में आता है कि अगर दुनिया में जो लोग हैं ये गुनाह ना करते, कोई भी ना गुनाह करता, तो गुमान था कि अल्लाह ताला इन सब को ख़त्म करके एक नई दुनिया बनाता, और वो लोग जो गुनाह करके फिर तौबा करते अल्लाह उनसे इस दुनिया को भरता। अल्लाह को तौबा करने वाला इतना प्यारा लगता है, इस तरह से फिर अल्लाह ताला बंदे को खैर देता है। एक खुलासा है, रिवायत है कि जब बंदा गुनाहों वाली ज़िंदगी छोड़ता है ना तो अल्लाह उसको तीन नेमतें ज़रूर देता है। पहली नेमत, उसको इज्जत मिल जाती है, कोई ख़ानदान नहीं, कोई नसब नहीं, कोई कबीला नहीं, कोई ओहदा नहीं, कुछ नहीं, लेकिन उसको इज्जत बहुत मिल जाती है, सच। दूसरी नेमत क्या है कि अल्लाह ताला उसके दिल को सुकून दे देते हैं, कोई उसका दोस्त नहीं, कोई दुख दर्द बांटने वाला नहीं, कोई हमदर्द नहीं, लेकिन उसको सुकून देते हैं। और तीसरी चीज़, उसके दिल को गिना दे देते हैं, माल है कि नहीं, पैसे अकाउंट में हैं कि नहीं, क्रेडिट कार्ड पे कुछ मिलता है नहीं, लेकिन उसका दिल गनी रहता है, दिल का दौलतमंद आप कह लीजिए। और आप देखिए कि यही वो तीन चीज़ें जिसके लिए आज लोग सुबह से शाम तक मशीनों की तरह काम करते हैं, पापड़ बेलते हैं, लेकिन मिलती ना इज्जत है, ना माल मिलता है, और आप ना देखिए दिल का सुकून मिलता है। मैंने ऐसी कई बच्चियों को देखा है अपने इर्द गिर्द, माशाल्लाह जब कुरान की तरफ आती हैं, फुल टाइम जॉब करती थी, यानी एक बच्ची जिसकी मेरी आंखों में इस वक्त शक्ल है ये बात कहते हुए, फुल टाइम जॉब करती थी, मेरे हाल नर्सिंग का काम था उसका, बड़ी टाइट जॉब्स थी उनकी, फिर साथ साथ कोर्स शुरू किया, आहिस्ता आहिस्ता गैर मखसूस तरीके से उसकी जॉब के आवर्स कम होते गए, हत्ता के वो वक्त भी आ गया कि वो रात की जॉब करने लग गई कि मेरी क्लास ना मिस हो। और जो कि आपको पता है हॉस्पिटल की जॉब थी, तो सारी रात वहाँ मरीजों को देख दाख के हॉस्पिटल से सीधी स्कूल आ जाती थी, कि घर चली गई तो सो जाऊंगी, और सो गई तो फिर कौन उठाएगा। स्कूल में आके ना किसी टेबल के पीछे कोने में छुप के घंटा डेढ़, 7 बजे फारिग होती थी जब, वहाँ से आके 2 घंटे का होता था तो स्कूल में आके सो जाती थी 1 घंटा, कि यहाँ तो भी लोग आएंगे तो उठा देंगे। और इस तरह उसने अपनी जॉब को मूव किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसने अपनी जॉब वीकडे से ख़त्म करके वीकेंड पे की, कि चलो वीकेंड पे जाऊंगी। कुछ अर्सा गुजरा तो एक हालात ऐसे बन गए कि वीकेंड की क्लास की बहुत ज़्यादा हमारे पास फरमाइश आई कि बच्चियाँ यंग तो उनको भी क्लास करनी है तो करें। अब वो कौन करता हमारे साथ, पहला बैच था 7-8 सपारे इन लोगों ने उस वक्त तक पढ़े थे, ये बच्ची समेत और 3-4 बच्चियाँ माशाल्लाह जो इस वक्त भी स्कूल की बैकबोन है, वहाँ नॉर्वे की ये बात है, वो खड़ी हो गई कि हम वीकेंड्स पे भी आएंगे तो आप शुरू करेंगे कोर्स। उन दिनों में वो वीकेंड पे काम करती थी, पहले जो जॉब उसने वीकडेज से स्विच करके रातों की जॉब से सुबह पढ़ती थी ना, तो वीकेंड पे उसने उसी कोर्स की वो इंचार्ज बन गई, वीकेंड पे यंग बच्चियों के कोर्स की। तो वही काम फिर वीकेंड पे होने लगा, कि वो जो 2 रातों के लिए काम करती थी, दिन में आके फिर स्कूल में वॉलंटियर करती थी। पर अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये पता है कि इस वक्त जॉब भी पूरी ख़त्म, शादी अल्लाह ने की, मियाँ अच्छा समझने अल्लाह दीन को मिला, अब बिल्कुल एक हाउसवाइफ की ज़िंदगी बसर कर रही है। और ये वो बच्ची थी जो कहती थी मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं घर में रहूँगी जैसे मियाँ रहती हैं, लेकिन चूंकि वो एवरी डे 7 या 6 डेज मेरे वाले स्कूल में आती हैं, फुल टाइम पूरा पूरा दिन स्कूल में, फिर बच्चा भी अल्लाह ने दे दिया, तो वो मज़े में इंजॉय कर रही है। पहले हल्का फुल्का वॉलंटियर करने का हम बच्चियों को जेब खर्च के नाम पे देते हैं, जिसको ज़रूरत थी देते थे, जब शादी उसने कहा सजा हमें नहीं चाहिए स्कूल से कुछ भी, मेरी तरफ से स्कूल में ही डाल दें, अब मेरा मियाँ है बस वो मेरी टेक केयर करे। और फ़र्क है, मैं उससे पूछती थी जो बात मैं आपको बताने लगी ना, मैं पूछती थी कि ये बताओ कि फ़र्क क्या पड़ा है, पहले तुम पहले फुल जॉब करती थी फिर हाफ की फिर की नहीं, कहती उस कोई फ़र्क नहीं पड़ा सिवाय एक चीज़ के, भाई क्या, कहती शॉपिंग कम हो गई है, पहले जितना कमाती थी उतनी शॉपिंग ज़्यादा करती थी, पैसे कम हुए जॉब ख़त्म हो गई। आप कहती बाजार ही नहीं जाती, अभी रिसेंटली एक और बच्ची की शादी थी तो उसके सिलसिले में ये शायद गई होंगी कहीं शहर, तो मैं अब जब लास्ट टाइम गई तो कहने लगी, उसने शेयरिंग की बल्कि सबके बीच में, कि शायद मैं कितने अरसे के बाद शहर ग्रोनलैंड गई हूँ जहाँ ये सब चीज़ें शादी की मिलती हैं, तो मैं हैरान हो रही थी कि मैं वही हूँ कि मेरा तो एक दिन नहीं था गुजरता बाजारों मॉल्स के बगैर, और मैं शायद साल के बाद आई हूँ। और लड़कियों को वहाँ कहती सड़कों पर चलते फिरते देख के मैं सोच रही थी कभी मैं भी ऐसे ही बेकार थी ना, बिकाऊ माल की तरह बंदा ऐसे ही सड़कों में कूड़े की तरह फिरता है, कहती अब मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ती जाने की। तो पैसे कोई नहीं होते, कई बच्चियों की माँ ने बताया कि जितनी मर्जी जॉब कर ले पैसे इनकी जेब में फिर कोई नहीं होते, जितना कमाती है उतना है, और वो किस चीज़ के लिए खर्च कर रही होती है आपको पता, ये 3 चीज़ें सुकून खुशी इत्मीनान, वो फिर नहीं मिलता, इज्जत कहाँ से मिलनी है, डांट खानी क्रेडिट कार्ड लोगे इतने लंबे चौड़े बिल पड़े होंगे दिमागों पे, तो इज्जत किसने करनी है आपकी, सब कुछ छोड़ेंगे तो सब अल्लाह के घर से मिल जाता है, इज्जत मिलती है अल्लाह के काम से, अल्लाह का बन जाएंगे तो अल्लाह आपका बन जाएगा, और फिर इसमें आपको जो खुशी मिलेगी कुछ करने का एहसास जीने का एहसास, फिर तो मैं सोचती हूँ कि मरने को भी नहीं दिल करता, अल्लाह मर के क्या करना है, बोर होंगे कब्र में, ना वहाँ पढ़ना ना पढ़ाना ना कोई वॉलंटियर ना तेरे बंदों को दीन की तरफ बुलाना, अल्लाह मैंने क्या करना है कब्र में जाके, अल्लाह कहेंगे अच्छा वहाँ जन्नत होगी बाग होंगे यूँ कहते, वो तो होंगे पर दीन का काम तो नहीं होगा, इतना मज़ा आने लगता है इंसान को इस काम में, क्या किसी को कोई मैच देख के होगा, आप देख रहे होंगे 2-2.5 दिन से मैच चल रहे हैं ये स्टेडियम में, रात को भी आवाज़ आ रही होती है, तो मैं अक्सर अपने हस्बैंड से एक सवाल करती हूँ, मैं कहती हूँ ये वाकई इंजॉय करते हैं, जुम्मे से ये मैच शुरू हुआ है जो आज भी चल रहा है, एक ही है या फ़र्क है ये इवेंट डे है ना जो स्टेडियम में, तो क्या वो खुश हो रहे थे रात 12-1 बजे हा हू हुर्रा लगा के, सिर्फ एस्केपिज्म है, अब गुनाह तो छोड़ दिए अब क्या करें, अब नेकियां भी करें, ये अगला मरहला होता है, गुनाह किए छोड़े पहले तौबा की, गुनाह छोड़े अब इससे सुकून मिलना शुरू हो जाएगा, लेकिन असल इज्जत और मोहब्बत कब मिलेगी, जब आप फिर उसके बाद नेकियां करेंगे, ये ऐसे ही ना कि इस कमरे में से फालतू गंदा सामान सारा निकाल दिया तो अब इसमें नया भी तो लाना है ना, तो गुनाह हमारे घर का पुराना फर्नीचर है, बचपन से आते पड़ी भी थी घर करा रहे थे, अब क्या करें, अब इसके अंदर नेकी आना है, खूबसूरत साफ सुथरी अच्छे अच्छे काम करें, अब देखेंगे जितनी नेकी पड़ेगी, जितना कुछ अभी बताया ना गुनाहों के असरात, इसको अपोजिट कर लें तो नेकियों के वो असरात आप अपनी ज़िंदगी में महसूस करेंगे, और इतनी बरकत होगी कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन हम नेकियों के नाम पे क्या करते हैं, वजीफे और चंद बातें, कुरान का कुछ हिस्सा पढ़ लेते हैं, अमूमन देखिए किसी की भी नेकी का क्या मेयार है हमारे पास, नमाज़ पढ़ता है वो तो पढ़नी है वो तो फ़र्ज़ है वो तो हमारे मुसलमान होने की बात है, किसी ने बड़ी अच्छी बात भेजी लिख के कि 5 वक्त नमाज़ पढ़ना इज़ नॉट टू बी अ रिली नॉट टू बी रिलीजस बट इट्स टू बी अ मुस्लिम, कि अगर आप 5 वक्त नमाज़ पढ़ते हैं तो इसका ये नहीं मतलब कि आप रिलीजस हैं, नहीं इसका मतलब कि आप मुसलमान हैं, लेकिन हम अमूमन सिर्फ यही करके बैठ जाते हैं, नमाज़ें तो पढ़ते हैं और क्या करें, अब रोज़े आ रहे हैं बस रखेंगे साथ पकौड़े समोसे खाएंगे पियेंगे ख़त्म, हमारे जहन में नेकी का वो बड़ा तसव्वुर नहीं है कि ना सिर्फ ये कि अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी हमने अच्छे काम करने हैं, तो आप थोड़े से मशवरे दें कि क्या नेकियां कर सकते हैं हम आज के हालात में, जी रोहा,
दूसरों का भला करें,
दूसरों का भला करें,
शहद की मक्खी की तरह जो है ना बन जाए कि वो उसे और काम की चीज बनाती है शहद, जो सबके फायदे की होती है, उससे उसको खुद कुछ फायदा नहीं होता लेकिन लोगों के लिए फायदा होता है।
जी बहुत अच्छी बात आपने बताई कि शहद की मक्खी की तरह बन जाओ, जो फूल को नुकसान नहीं देती लेकिन उससे खैर ले लेती है। गुड, अच्छी टिप है। और आप बताइए चीरम, क्या करना चाहिए? जी, टू स्प्रेड द मैसेज ऑफ इस्लाम। और उसके लिए हमें खुद क्या चाहिए? खुद भी तो नॉलेज ऑफ इस्लाम चाहिए। जितना नॉलेज ऑफ इस्लाम हमें खुद मिलता जाएगा उतना हम दूसरों को देते जाएंगे। जी आप बताइए, हम क्या करें? एनी थिंग यू वॉन्ट टू शेयर?
आप खुद ही पहले ठीक करें, फिर आप
गुड, शाबाश। पहले खुद को ठीक करें फिर दूसरों को ठीक करेंगे। बिल्कुल जी। इधर से आप कुछ कहिए, क्या करें हम? सबसे ज़्यादा किसको हमारी ज़रूरत है? हमें खुद ज़रूरत है। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। खुद को आग से नहीं बचा रहे तो दूसरे को बचाने लग जाएंगे तो पीछे से आग हमें खा जाएगी। तो जैसे दुनिया में आग लगती है तो पहले खुद को बचाते हैं। कभी जहाज़ों में आपने वो देखी होगी, सिक्योरिटी की जो वीडियो दिखाते हैं तो वो क्या कहते हैं? इन केस ऑफ इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क आपके पास आ जाएगा, बिफोर दूसरों के असिस्ट कर दें कि खुद को लगा लें। तो हम दूसरों को अच्छी बातें बताएं लेकिन हमें खुद ही ना पता हो तो फिर हम तो नहीं बचेंगे ना। तो कोशिश अपनी ज़ात से शुरू करनी है। जो चीज़ मेरे पास नहीं है मैं पहले वो करूँ, फिर दूसरों को भी इंशाल्लाह बताऊंगी तो मेरी बात में भी असर ज़्यादा होगा। जी आप बताइए, कोई सदफ आप को टिप दें?
मुझे आप जब अभी बात कर रही थी ना, तो मेरे जहन में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, सब अपनी जगह पर होता है। मैं अब है ना, मैं उनको हमेशा अंदर से क्रेविंग होती है कि मैं इनको किस तरह से अपने ऊपर लाऊं, अपने अपने पास, अपने अपने रिलीजन के बारे में किस तरह बात बताऊं। तो मुझे हमेशा ये क्रेविंग होती थी, मगर लास्ट वीक जब उसका जवाब मुझे लास्ट वीक आपके साथ जाकर मिल गया, उस जगह पर, उस दर्स में, जहाँ पर एक दर्स था एक घर में, और वहां पर एक, तो मुझे बड़ी हैरत हो रही थी। मैंने कहा यार, ये तुम्हें सवाल का जवाब मुझे चाहिए था कि समझ नहीं आता कि आप कैसे नॉन मुस्लिम्स को अपनी बात बताएं। मगर उस्ताद जी ने जिस तरह से फिर वहां बात करना शुरू करी, और किस तरह से उनको पहले एक मामले सूरह फातिहा के पहले अलहमदु से, मतलब इनको थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, इनको बताया बहुत प्यारी तरीके से, फिर इनको आहिस्ता आहिस्ता बता के थोड़ा समराइज फॉर्म में, और इसके बाद फिर इनको सूरह मरियम का बताया, सूरह मरियम का और सपना। तो वो जिस तरह से वो बता रही थी, अब मुझे लगता है कि आज अब मुझ में इतना इतना कॉन्फिडेंस, मामूली सा इतना डेवलप हो गया है कि मैं किसी नॉन मुस्लिम से बात करूँ। तो बस आपकी बात के दौरान बस मेरे दिमाग में वही ख्याल आया था।
Do you, sorry, मैं इंटरप्ट कर रही हूँ। Do you realize what a blessing that is? It's not between you and Ustaza ji. This was answered directly from Allah Subhanahu wa Taala through Ustaza ji to you.
कि मैं, मेरी फ्रेंड है, ठीक है, मैं उससे बात करती हूँ, मगर मेरा एक और फर्ज, सबसे माय प्रायोरिटी इज माय माय लॉयल्टी इज टू माय अल्लाह, कि मैं अल्लाह का मैसेज मैं उस तरफ नहीं पहुंचा रही हूँ।
किसी ने एक दफा मिसाल दी थी कि हमारी मिसाल पोस्टमैन की तरह है, कि हमें अल्लाह ताला ने एनवलप्स दिए हुए हैं और हमें कहा है कि आपने डिलीवर करने हैं सबको। अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपने उनको खुलवा के उनसे मनवानी है बात। आपका काम है मैसेज आप ऐसे तरीके से आगे पहुंचा दें, अमानत में अमानत को पूरी करें, डिलीवर कर दें। लेकिन अगर आप नहीं करेंगे, इमेजिन व्हेन यू गेट बैक ऑन द डे ऑफ जजमेंट एंड यू आर गोइंग बैक विद अ पाइल ऑफ लेटर्स विद यू, और आप जाके अल्लाह ताला को क्या कहेंगे कि हालांकि आपने दिए तो थे डिलीवर करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं किया, मैं बिजी था, तो ये आप ले लें वापस।
नहीं
जी, बहुत अच्छी बात है। यही तो बात देखिए कि अल्लाह ताला अपने नबी को भी कहते थे ना कि आपके ज़िम्मे पहुँचाना है, वमा अलैना इल्लल बलाग, जस्ट मतलब डिलीवर कर दीजिए उस लेटर को, वो खोल के पढ़े ना पढ़े, उसमें कोई गम की बात है, किसी का जॉब लेटर है, किसी का ले ऑफ लेटर है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम सब अपने साथ अपने जितने मुस्लिम नॉन मुस्लिम लोग हैं उनके लेटर्स लेके फिर रहे, लेकिन आज तक हमने डिलीवर क्यों नहीं किए? हम सारे साथ लेके जाएंगे और कब्र में जाके खोलेंगे कि किस किस के खत हमारे साथ ही आ गए हैं। जी बेटा,
आप मैनचेस्टर का बात कर रही थी ना, गाड़ी का, एक मैंने उससे मेरा ओन एग्जांपल बना दिया, ताकि एक योर लाइफ इज अ कार एंड इट नीड्स द राइट रोड टू गो टू, एंड इफ यू टेक द रॉन्ग रोड देन यू गेट लॉस्ट इन यू माइट नॉट इवन गेट बैक टू दैट राइट द रॉन्ग
माशाल्लाह, वेरी गुड एग्जांपल बेटा आपने दी। और मे अल्लाह कीप यू ऑन द स्ट्रेट पाथ और एक दिन सिरातल मुस्तकीम। आप इस बच्ची को अभी से क्लास में डाल दें, ये आपके लिए बहुत बड़ा सेट बनेगी इंशाल्लाह। تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین طریقے سے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والا بنا دے. بس ایک چھوٹی سی بات کہوں گی کہ جیسے علاج کے ساتھ پرہیز ضروری ہوتی ہے نا, اسی طرح بعض دفعہ ہوتا کہ ہم نیکی کی طرف جب آتے ہیں نا تو ہم نیکیاں تو شروع کر دیتے ہیں, جیسے نمازیں شروع کر دیتے ہیں, روزے بھی رکھ لیتے ہیں, لیکن گناہ نہیں چھوڑتے. اب یہ بھی ایک کیس ہے, اس کو بھی سمجھ لیں. یعنی شاور لے کے گندے کپڑے نہیں پہن سکتے نا, وہی کپڑے جو پہلے پہنے ہوتے ہیں کچھ نہیں ہو رہا ہوتا, لیکن جو ہی شاور لے لیں دوبارہ وہ پہننے کو دل نہیں کرتا. ایسے ہی ہے نا. تو جب ہم ہوتے کہ اب یہ کیس آپ کے ساتھ ڈسکس کریں, یہ آخری کیس ہے انشاءاللہ ہمارا آج کی اس نشست کا, کہ جب ایک بندہ نیکیاں تو کرنا شروع کر دیتا ہے, گناہ نہیں چھوڑتا, پھر کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ؟ اب گناہوں کا آفٹر ایفیکٹ تو پھر بھی ہے. اب نیکیاں بھی کی, گناہ نہیں چھوڑے, جب گناہ نہیں چھوڑے تو حالات نہیں بدلیں گے, نہ دل کی کیفیت بدلے گی. پھر وہ کیا کہتا ہے, لو جی پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا تو یہی حال تھا میرا, جاب نہیں مل رہی تھی, اب نیکیاں بھی شروع کر دیں اب بھی یہی حال ہے. تو اب آپ اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی آپ نے دوا تو کھانی شروع کر دی ہے, ابھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. جب انسان دین کی طرف راغب ہوتا ہے, نیکیاں کرتا ہے, آہستہ آہستہ گناہوں کو بھی چھوڑتا ہے, تو پھر آپ دیکھیے کہ اس کی اصل برکت آتی ہے. ورنہ آج لوگ نیکیوں کے نام پہ صرف وظیفے کرتے ہیں. کئی لوگ کہتے ہیں جی وہ تو میں 2 گھنٹے کا وظیفہ کرتی ہوں, میں اس میں بولوں گی نہیں, میں اس میں کسی سے ملوں گی نہیں, وہ نہیں ہوگا. تو فائدہ وظیفوں کا کیوں نہیں ہوتا ہمیں؟ کیونکہ ہم گناہوں کا پرہیز نہیں چھوڑ رہے ہوتے. اللہ کے بارے میں تو بدگمانی ہے کہ جی اللہ نے میرے ساتھ پتہ نہیں کیا زیادتی کرنی ہے. یا اسی جیسے ایک بندے کا اسٹمک اپسیٹ ہوتا ہے نا, تو آپ اس کو اچھے سے اچھا بھی کھانا کھلائیں گے نا تو اس کو بیماری بن کے لگے گا, لیکن جب اچھے صحت مند طاقت والا بندہ سے وہ کھانا کھاتا ہے اس کو اس کا بہت ٹیسٹ آتا ہے. تو نیکیوں کا ٹیسٹ اس کو آئے گا جس نے اپنے اسٹمک کو گناہوں سے بچا لیا ہوگا. پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اسے بہت زیادہ خیر ہوگی. نیکیاں اور گناہ ساتھ ساتھ ہماری زندگی پہ افیکٹ کرتے ہیں. تو جتنا تقویٰ آپ کے اندر آتا جائے گا میرے اندر, اتنی ہماری نیکیوں میں بھی خیر آئے گی. گناہوں سے خود بہت دل بھرتا ہے, یقین کریں. نیکی کی ایک تاثیر ہے کہ اس کے ساتھ انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے. کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ تو کتنا کریم ہے, میں گناہ بھی کرتا ہوں تو مجھے پکڑتا ہی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ پکڑتا تو میں ہوں تجھے, لیکن تجھے احساس نہیں ہوتا میری پکڑ کا. کہنے لگا کیا, کیسے پکڑتا ہے؟ تو کہا میں نے تیری عبادت کی مٹھاس نہیں ختم کر دی, یعنی تو نمازیں پڑھتا لیکن تجھے کوئی جواب ہی نہیں اوپر سے آتا, کیا یہ کم عذاب ہے؟ تو سجدے کرتا لیکن تجھے سجدوں میں وہ مزہ نہیں آتا. کہا ہاں ہاں یہ تو ہے. تو کہا یہی میری طرف سے تیری پکڑ ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر. بس انشاءاللہ اب نماز پڑھیں گے, وقت بھی ہمارا پورا ہو رہا ہے. اس طرح تو بات کا خلاصہ یہ ہے کہ جتنا نیکیاں کر کے لذت ملے اور گناہ چبھنے لگے, اتنا انسان کے ایمان کی علامت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حقیقی معنوں میں نیک بنا دے, ہر گناہ ہم سے چھٹتا جائے اور ہر نیکی ہمیں خیر کے ساتھ مل جائے. جتنا اللہ کی پکڑ کا احساس ہوگا گناہوں سے رغبت ختم ہوگی. ایک باپ اگر بچے کو سگریٹ پینے سے منع کرے اور بچہ کہیں چھپ کے پی رہا ہو, تو کیا سگریٹ پینے کا مزہ آئے گا اس خوف سے کہ ابا بھی نہ دیکھ لے؟ بس یہی بات ہے سارے پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی فکر اس سے زیادہ لگا دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا اللہ ہمارے سب چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما, کبیرہ صغیرہ سے یا اللہ ہمیں سرخرو فرما, اور ہمیں نیکیاں کرنے والا بنا, ہمیں سکون دے, ہمیں دل کی خوشی دے, ہماری زندگی میں برکت ڈال دے, اور یا اللہ ہمیں اس طرح سے اس دنیا میں رکھ جیسے جنت میں جانے کے بعد دل کو سکون اور خوشی ہوگی, اور یا اللہ جو بھی نیکیاں ہم کریں اس میں اصل لذت دے. اللہ تعالی ہمیں عبادت کی مٹھاس اور حلاوت دے, اور نیکیوں سے محبت اور گناہوں سے نفرت دے. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.